आइए हम कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, यह वास्तव में हमारे लिए एक खास अवसर है कि हम अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता को पुकार सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं। इस प्रभु महान जैसे अद्भुत गीत को सुनकर हम रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप वास्तव में अति महान हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज अपराह्न जब हम तेरे विषय में बातचीत करते हैं, तो तेरी सामर्थ और महानता नए सिरे से हमारे लिए प्रकट हो। पिछले अनेकों वर्षों में पहली बार मेरे हिस्से में समय आया है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालूं, और मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप मेरी सहायता करें और मुझे शक्ति दें प्रभु, क्योंकि मुझे आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। और जो भी भूलें या गलतियां पिछले जीवन में मैंने करी हैं, उन्हें दीजिए कि वे दूसरों के लिए सही पग उठाने का चिन्ह बने और उन्हें आपके निकट ले आएं। प्रभु इस विनती को स्वीकार करें। काश पापी जन समय की रेत पर बने पग चिन्ह देख सकें और तेरे पास लाए जा सकें। यह सब कुछ हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ जाइए, मुझे खुशी होगी। ठीक है श्रीमान, धन्यवाद। इन संत सरीखे भाई ग्लोवर को मैं कुछ वर्षों से जानता हूँ। कल शाम मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का सुअवसर मिला था, और उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ी देर आराम करने के लिए उन्हें लेटना पड़ा था, क्योंकि वह अस्वस्थ हो गए थे। और अब 75 वर्ष की आयु में वो फिर से प्रभु की सेवकाई करने के लिए तैयार हैं। इस समय मैं अपनी आधी थकान भी महसूस नहीं कर रहा हूँ, उस समय की थकान की बनिस्बत जो मुझे अनुभव हो रही थी जब मैंने भाई के बारे में नहीं सुना था। मैं सोचता था कि मैं थक गया था, मगर अब नहीं सोचता कि मैं थक गया हूँ। उन्होंने मुझे अभी एक लिफाफे में वस्त्र आदि दिए हैं जिन पर प्रार्थना करनी है। उन लिफाफों में वो वस्त्र बंद है। अब अगर आप में से कोई यहाँ या कहीं भी जो किसी अन्य स्थान से रेडियो के इस प्रसारण को सुन रहे हैं, यदि इन प्रार्थना किए हुए वस्त्रों को लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि एंजेलिस टेम्पल वाले इन्हें हर समय बाहर भेजते रहते हैं। आप एंजेलिस टेम्पल वालों को लिख सकते हैं और वे इनके ऊपर प्रार्थना कर देंगे, क्योंकि मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि ये वचन में लिखा है और इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि प्रार्थना किए वस्त्रों से बीमार चंगे हो जाएंगे। और अगर आप चाहें कि मैं आप में से किसी के लिए प्रार्थना करूं, तो ऐसा करके मुझे खुशी होगी। आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 325 पर मुझे लिखिए। आप लिख सकते हैं बॉक्स नंबर 325 जेफरसन विले, इसके स्पेलिंग है JEFERSONVILLE, जेफरसन विले, इंडियाना। इस पते पर आप लिख दीजिए। और अगर आपको बॉक्स नंबर याद ना रहे तो बस जेफरसन विले लिख लें। ये शहर एक 35,000 की आबादी वाला छोटा सा शहर है, यहाँ मुझे सभी जानते हैं। अतः हमें किसी वस्त्र पर प्रार्थना करके उसे आपको भेजने में खुशी होगी। हमें ऐसा करने में भारी सफलताएं मिली हैं। आपको लिफाफे में वस्त्र के साथ एक पत्र फार्म भी मिलेगा, ताकि सारी दुनिया में कहीं पर भी लोग एक साथ रोजाना सुबह 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे प्रार्थना कर सकें, और लोग हिसाब लगाकर जान सकते हैं कि इन समय पर उनके देश में क्या समय होगा, और वे रात को उठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हजारों लाखों करोड़ों लोग जब एक साथ इस सेवकाई के लिए अथवा बीमारों के लिए जब एक ही समय पर परमेश्वर से विनती करेंगे, तो परमेश्वर उस विनती को अस्वीकार नहीं कर सकता। और अब हम, जैसा कि मैं कहता आया हूँ, हमारा कोई वैसा कार्यक्रम नहीं है, हमें एक पैसा भी इसके लिए नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि बस हम आपकी सहायता कर सकें, और हम इसीलिए हैं। कोई वस्त्रों का एक और बंडल प्रार्थना के लिए ला रहा है। अब अगर आपके पास कोई वस्त्र नहीं है जिसे आप भेज सकें, तो जैसे भी हो हमें लिखिए। यदि जड़ीय वस्त्र आपको मिले और आपको उसकी आवश्यकता न हो तो उसे प्रेरितों के काम नामक पवित्र शास्त्र की पुस्तक के 19वें अध्याय में रख दीजिए। और ये वस्त्र एक छोटे से रिबन के रूप में होगा जो कि कुछ निर्देशों के साथ आपको भेजा जाएगा कि किस प्रकार आपको पहले अपने पापों को स्वीकार करना है और किस तरीके से पापों को कबूल करना है। आपको परमेश्वर से कभी भी कुछ भी मांगने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप पहले अपने संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ना कर लें, समझे। और फिर आपको इस प्रकार के निर्देश भी दिए जाते हैं कि आप अपने पड़ोसियों को बुलाएं और स्थानीय सेवक गण यानी पास्टर को बुलाएं। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कोई दुर्भावना हो तो पहले जाकर उसको दूर करके आएं और तब प्रार्थना करें, अपने घर पर प्रार्थना सभा करें और इस वस्त्र को अपने अंदर के वस्त्र के साथ पिन से टांग लें और फिर परमेश्वर पर विश्वास करें। और बताए गए उन 3 समों पर प्रत्येक दिन सारी दुनिया में लोग प्रार्थना करते रहेंगे और इस प्रकार दुनिया भर में प्रार्थना की जंजीर सी बन जाएगी। और यह सब आपके लिए है और पूरी तरह से निशुल्क है, वैसे ही आपको भेजा जाता है। और हम आपको दोबारा किसी प्रकार के पैसे के तकाजे आदि के लिए नहीं लिखेंगे या कोई अन्य इस तरह की योजना नहीं बताएंगे। वो कि हम चाहते हैं कि आप इस प्रार्थना कार्यक्रम में हमारी मदद करें, इसे सफल बनाएं, मगर बस इसके सिवाय हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप। हमारा ध्येय आपका पता पाना और आपको कुछ अपनी अन्य योजना बताना नहीं है, वरन ये जो हम कर रहे हैं प्रभु की सेवकाई है जिसमें आपको भी शामिल करते हैं तथा इस सेवकाई को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। और यदि आप रेडियो प्रसारण सुन रहे हैं तो अपने वस्त्र वहाँ रखकर उन पर अपने हाथ रखें जबकि हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरे सामने इन वस्त्रों के बंडलों को लाए हैं। इनमें से कुछ तो शायद छोटे बच्चों के कच्चे हैं या चड्डी दिखाई पड़ती हैं, या अंदर पहनने वाली बनियाने या चोले हैं या इसी तरह के कपड़े हैं। ये वस्त्र हैं जो बीमारों और रोगग्रस्त लोगों के पास जाने हैं। प्रभु, हम आपके वचनानुसार ही यह सब कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में पढ़ा है कि लोग तेरे दास पौलुस के शरीर से वस्त्र आदि छुआते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि तेरा आत्मा उसमें था। और चूंकि वे विश्वास करते थे इसीलिए दुष्ट आत्माएं और बीमारियां लोगों को छोड़कर चली जाती थी। हम जानते हैं प्रभु, मानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, मगर हमें मालूम है कि आप आज भी वही यीशु हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों के विश्वास को कबूल करेंगे। एक बार कहीं कहा गया है कि जब परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए इसराइली लोग मार्ग में घिर गए थे, जब समुन्दर उनके सामने था, दोनों ओर पहाड़ थे और फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी, इस बारे में किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने आग के सतून में से क्रोधित नगरों से नीचे देखा और समुद्र डर कर पीछे की ओर सिमट गया और इसराइल के लिए वायदा किए हुए देश में जाने का मार्ग बना दिया गया। हे प्रभु, आज फिर नीचे दृष्टि कीजिए जबकि आपके जीवित वचन की विजय स्मृति में ये वस्त्र बीमारों के शरीर से छुआए जाते हैं। होने दीजिए कि बीमारियां भयभीत हो जाएं। अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में से नीचे देखिए जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मारा गया था, और होने दें कि शत्रु डरकर भाग जाएं और यह लोग तेरे प्रतिज्ञा किए वचन के भागीदार बन सकें, क्योंकि और सभी बातों के अतिरिक्त तेरी इच्छा यही है कि हमारी देह स्वस्थ बनी रहे। पिता, इस प्रार्थना को स्वीकार करें क्योंकि हम इसे अपने हृदय के खरेपन से तेरे सम्मुख रख रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई ग्लोवर, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। अब आज चूंकि ये हमारी बेदारी की सभाओं का अंतिम दौर है, मुझे नहीं मालूम कि इसका रेडियो प्रसारण किया जाएगा अथवा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि रेडियो प्रसारण सुनने वाली सभा से कि गुजरे कितने ही वर्षों में ये सबसे बेहतरीन सभाएं रही हैं जो मैंने ली हैं। जैसा कि काफी समय से मैं चाह रहा था, ये सभाएं बहुत ठोस, बड़ी प्यारी और महत्व से भरी सहयोगपूर्ण सभाएं रही हैं। धन्यवाद श्रीमान, ये अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और वास्तव में मेरे हृदय में एंजेलिस टेम्पल के लिए खास स्थान है, क्योंकि वह यीशु मसीह के सुसमाचार के काम के लिए पूर्ण रूप से लगा हुआ है। और अब ये सब मुझे एकदम अपना सा लग रहा है। सभा के बाद सब लोगों से मिलकर उन भरी आत्माओं को जानकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी आप में से ही कोई एक हूँ और कोई अजनबी नहीं हूँ जैसा कि पहले था। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद, मेहरबानी। अब आज ये तय पाया गया था कि मुझे थोड़ी देर अपनी जीवन कथा के बारे में बातचीत करनी है। मेरे लिए यह एक बड़ा कठिन काम है। पिछले अनेकों वर्षों में ये पहला अवसर होगा कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ। बहुत विस्तार में जाने के लिए तो समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता पाऊंगा। और मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हैं, बहुत सी भूलें मुझसे हुई हैं। और आप जो यहाँ या कहीं और रेडियो पर इसे सुन रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि मेरी गलतियों से ठोकर ना खाएं, बल्कि वे आपके लिए पथ के वे चिन्ह बन जाएं, जिनको ध्यान में रखकर आप प्रभु यीशु के और निकट लाए जा सकें। और आज रात चंगाई प्रार्थना सभा होगी, जिसके लिए कार्ड जारी किए जा रहे हैं। और जब हम चंगाई की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को चंगाई देने जा रहे हैं, बल्कि ये है कि हम किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। चंगा तो परमेश्वर करता है, वो मेरे प्रति सदा अनुग्रह करता रहा है और प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। कुछ दिनों पूर्व मैं एक विख्यात धर्म प्रचारक के प्रबंधक से बातचीत कर रहा था। तब ये सवाल किसी ने पूछा कि यह धर्मोपदेशक बीमारों को चंगा करने की प्रार्थना क्यों नहीं करते। और उन्होंने मेरे मैनेजर को बताया कि वह दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, मगर अगर वे बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो उनकी सेवकाई के काम में रुकावटें आ जाएंगी, क्योंकि उनका खर्च आदि गिरजे उठाते हैं। अनेकों नामधारी गिरजे और उनके सदस्य दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करते। अतः मेरे हृदय में उस धर्मोपदेशक के लिए आदर सम्मान है, क्योंकि वह अपने काम को जो उसे दिया गया है किसी भी तरह किए तो जा रहा है। शायद मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकता, और मुझे शक है ना ही कभी वो मेरी जगह ले सकता है। परमेश्वर के राज्य में हम सब के लिए एक स्थान अलग अलग तय है। बहुत से अलग अलग दान हमें मिले हैं, मगर एक आत्मा के द्वारा हमें एक साथ एक देह में मिलाया गया है। मेरा अर्थ है, एक ही आत्मा के फलों को अलग अलग लोगों में प्रकट किया गया है। और आज रात की सभा, मैं सोचता हूँ कि संगीत स्तुति आदि 6:30 बजे शुरू होगा। और आप जो बाहर रेडियो संपर्क से जुड़े हैं, सुनने आए, ये सुंदर सभा होगी, हमेशा ऐसा ही होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सभा के तुरंत बाद प्रार्थना के लिए कार्ड आदि जारी किए जाएंगे। जो ही ये सभा समाप्त होगी, यदि आप हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं तो प्रार्थना कार्ड की जरूरत है तो ले सकते हैं। कुछ क्षण पहले ही मुझे ये बताने का निर्देश मिला था, मेरा पुत्र या श्री मर्सर या श्री गोयल इनमें से कोई प्रार्थना कार्ड बांटेंगे। कृपया आप अपने स्थान पर बने रहिएगा, बैठे रहिएगा। जो ही सभा समाप्त हो आप यथा स्थान बैठे रहिए, ताकि लोग अतिशीघ्र जितना संभव हो आपको वहीं पर प्रार्थना कार्ड दे सकें। सभी जगह जहाँ भी आप हैं, यहाँ हाल में, ऊपर बालकनी में, सभी जगह कार्ड बांटे जाएंगे। आप बस अपने स्थान पर बैठे रहिएगा और ये लोग जान जाएंगे कि आप प्रार्थना कार्ड के लिए बैठे हैं। और आज रात हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर परमेश्वर मेरे विचार न बदले, तो मैं आज रात इस विषय पर वचन प्रचार करूंगा कि यदि तू हमें पिता को दिखाएगा तो हम संतुष्ट होंगे। अब इस दोपहर वचन में से पढ़ने और अपनी जीवन कथा शुरू करने के लिए मैं जो वचन पढ़ना चाहता हूँ, वह इब्रानियों की पुस्तक के 13वें अध्याय में है। आइए इब्रानियों 13वें अध्याय की 12वीं पंक्ति से पढ़ें।
इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया।
तो
आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। अब देखिए कि ये एक प्रकार का पाठ है। अब देखिए कि यह एक प्रकार का पाठ है, क्योंकि यदि ये जीवन कथा है या और कुछ है तो शारीरिक या मानव मात्र से संबंधित है अगर ये, तो हम उसका गुणगान नहीं कर सकते। खास तौर से किसी मेरे जैसे मनुष्य के पिछले जीवन संबंधी बात जो कि अत्यंत काला है उसके विषय में शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम पवित्र शास्त्र में से कुछ पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देगा। और मेरा विचार है कि क्योंकि हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। मैं जानता हूँ कि आप इस लॉस एंजलिस शहर को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा करने का आपका अधिकार है। यह अत्यंत सुंदर शहर है। अपनी धुएं और कुहासा और ऐसी भी दशा के बावजूद भी यह एक सुंदर शहर है। इसकी जलवायु अच्छी है, लेकिन ये शहर सदा बना नहीं रह सकता। इसका अंत होना है। मैं रोम में था जहाँ बड़े बड़े राजा हुए हैं, और वहाँ ऐसे शहर थे जिन्हें बनाने वालों ने सोचा था कि वे नगर अमर रहेंगे, और आज उनके खंडरातों को भी पाने के लिए धरती में 20 फीट गहराई तक खोदना पड़ता है। मैंने उस जगह पर खड़े होकर देखा है जहाँ पर फिरौन राजाओं के महान राज्य थे, और आज आपको ये जानने के लिए धरती खोदनी पड़ती है कि फिरौन के महान राज्य कहाँ स्थित थे। हम अपने नगर और अपनी जगह के बारे में अक्सर सोचते हैं, मगर याद रखिए वे सदा बने ना रहेंगे। मैपल पेड़ के नीचे बैठा करता था। मेरे इलाके में बहुतायत से ठोस और सख्त लकड़ी पैदा होती है, एक मीठा या इसको शुगर मैपल पेड़ कहा जाता है, जिसे हम सख्त मैपल और नरम मैपल पेड़ के नाम से पुकारते हैं। और यह मैपल का पेड़ एक बड़ा भीमकाय सुंदर पेड़ था, और जब मैं खेतों में काम करके चारा काटकर लवनी या कटनी करके वापस आ रहा होता था तो मुझे इस वृक्ष की छाया में बैठना बड़ा अच्छा लगता था। मैं वहाँ बैठकर ऊपर पेड़ की ओर देखता रहता था। मैं देखता था उसकी बड़ी बड़ी शाखों को जो तेज हवा से इधर उधर झूलती रहती थीं, और उसके तने को जो बहुत बड़ा था। और मैं कहा करता था कि ये पेड़ सैकड़ों वर्षों तक यूं ही कायम रहेगा। अभी अधिक समय नहीं हुआ जब मैंने उस वृक्ष को देखा था, और अब वो मात्र एक फूट सरीका बन चुका है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। यहाँ धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर आप कह सकें कि यह सर्वदा स्थिर रहने वाला है। प्रत्येक चीज का जो यहाँ है अंत होना है। प्रत्येक वह चीज जो मरणहार है उसे मिटकर अमरता का मार्ग प्रशस्त करना होता है। अतः चाहे हम कितने ही बढ़िया राजपथ बनाएं, अपने भवनों को, उनके ढांचों को कितना भी अच्छा क्यों न बना लें, यह सब नाश होना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल जो आंखों को दिखाई नहीं देता वही कायम रहने वाला है। मुझे याद आता है वो मकान जिसमें हम रहा करते थे, एक पुराना लकड़ी के लट्ठों और गारे की मिट्टी से लिया लिपा हुआ झोंपड़ा हुआ करता था। शायद बहुत से लोगों ने तो गारे मिट्टी और लकड़ी का बना झोंपड़ा देखा तक न होगा। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों और मिट्टी से बना वो पुराना मकान था। मैंने सोचा था कि वो सैकड़ों वर्षों तक कायम रहेगा, लेकिन आप देखिए कि जहाँ वो मकान था हमारा, वहाँ आज एक आवासीय योजना खड़ी है। पहले से आज वहाँ सभी कुछ बहुत भिन्न हो गया है, सब कुछ बदल रहा है। मैं अपने पिता को देखता था जो कि छोटे कर काठी के ठोस से व्यक्ति थे। वो बहुत बलवान थे। वह मेरी नजर से गुजरने वाले एकमात्र इतने अधिक बलवान व्यक्ति थे। मेरे पिता लकड़ी के लट्ठों को जंगल में काटते थे। उनके एक साथी श्री कूट से मैं मिला हूँ। अभी एक वर्ष पहले उनसे भेंट हुई थी। श्री कूट्स जो कि फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के डीकन हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि बिली तुमको एक वास्तविक शक्तिशाली मनुष्य होना चाहिए, और मैंने कहा श्रीमान कूट्स नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। उन्होंने कहा था अगर आप अपने पिता के ऊपर जाएं तो बलवान व्यक्ति बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने खुद तुम्हारे पिता को देखा है, उनका अपना वजन 140 पाउंड था और वो अकेले 900 पाउंड वजनी लट्ठे को उठाकर गाड़ी में चढ़ा दिया करते थे। ये बात तो बस वही जानते थे कि वो ऐसा कैसे कर पाते थे। वह बहुत बलवान। जब मेरी माँ उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती तो मैं उन्हें काम से वापस आते और हाथ मुंह धोते खाना खाने की तैयारी करते देखता था। और उस मकान के सामने दालान में एक पुराना सेब का पेड़ था और उसके पीछे की तरफ भी तीन या चार पेड़ थे और ठीक बीच वाले पेड़ पर एक बड़ा सा टूटा शीशा टंगा था जिसे चारों तरफ कीले गाड़कर कीलों को मोड़कर टांग दिया गया था, जैसा कि आप में से बहुत से बढ़ई का काम करने वाले उसे कोट हैंगर के नाम से पुकारेंगे। मोड़ दिया गया था ताकि दर्पण वहाँ बीच में टंगा रहे और वहाँ एक पुरानी टीन की कंगी थी। आप में से कितने लोगों ने पुराने फैशन की टीन की कंगी देखी है? मेरे सामने आज भी वो कंगी साकार हो उठती है। और वहाँ एक हाथ मुंह धोने का स्थान बनाया गया था, एक छोटा सा तख्ता पेड़ के साथ टांगा हुआ था जिसे नीचे से एक तिरछी लकड़ी फंसाकर रोक दिया गया था। एक छोटा सा हैंडपंप वहाँ लगा था जिससे हम नित्य पानी खींचा करते थे और उसी पुराने पेड़ के पास नहाना धोना किया करते थे। खाद्य पदार्थों के पुराने थैलों से तौलिया बनाया करते थे। क्या आप में से कभी किसी ने पुरानी थैलियों या बोरों से बना तौलिया इस्तेमाल किया है? अब मुझे लग रहा है मानो मैं अपने घर के लोगों में बैठा हुआ बातचीत कर रहा हूँ। वो बड़े बड़े खुरदरे तौलिये हम इस्तेमाल करते थे और जब हमारी माँ हम सब बच्चों को नहलाती थी और हमारे जिस्म को उन तौलियों से रगड़ती थी तो लगता था वो हमारी खाल उतार रही हैं। और मुझे वो पुराने थैले याद आ रहे हैं जिनमें भोजन पैक होता था। हमारी माँ उन पुराने थैलों के सिरों में फुंदने बांधकर उन्हें सजाया करती थी। भूसे के खोल के बने बिस्तर पर आप में से कितने लोग कभी सोए हैं? भाई मैं पूछना चाहूँगा, कितने लोग जानते हैं कि भूसे या छिलके का बना तकिया क्या होता है? भाई ग्लोर, अब मैं आश्वस्त हूँ कि मैं अपने घर में बैठा हुआ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। वाल का बिस्तर अभी अधिक समय नहीं बीता जब मैंने उसे देखा था। ओ, उस पर बड़ी अच्छी नींद आती है, ठंडा ठंडा लगता है। और जाड़ों में उस पर पक्षियों के परों से बना गद्दा बिछा दिया जाता है। पतली पतली पुरानी लकड़ी की पट्टियाँ खड़खड़ाकर उलट जाती थी और बर्फीली हवा इसमें से भीतर घुस आती थी। ओ, वो सब मैं भली प्रकार से याद कर सकता हूँ। और पापा जी के पास शेव करने वाला हजामत बनाने का एक ब्रश था। मैं बताता हूँ वो कैसा था। वो अनाज या मक्का के छिलके से बनाया गया था। मक्का के छिलके से बना ब्रश माँ का बनाया हुआ पुराना साबुन का घोल था जो सब्जियों के खार व जल से तैयार किया होता था और पापा जी साबुन के रूप में प्रयोग करते थे। इसको अपने चेहरे पर लगाते और एक लंबे पुराने उस्तरे से दाढ़ी बनाया करते थे। इतवार को शेव करते समय अपने गले के चारों ओर कागज के कॉलर से लगा लिया करते थे। वे सेलुलाइड के बने कॉलर होते थे जिन्हें गले में इसलिए लगाया जाता था कि झाग कमीज के कॉलर पर गिरकर उन्हें गंदा न करे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? ओ प्रभु, क्या कभी देखा है? मुझे याद है वो छोटा सा झरना जो हमारे घर से थोड़ा नीचे मौजूद था, जहाँ से हम पीने का पानी अपने बर्तन में भरकर लाते थे और वो बर्तन लौकी कद्दू जैसे एक बड़े फल को खोखला करके बनाया जाता था। उसे अंग्रेजी में गोल्ड डिपर कहते हैं। कितने लोगों ने देखा है? आप में से कितने लोग केंटकी प्रदेश के रहने वाले हैं, जरा बताएं। ओ ठीक, इतने, जरा देखिए तो इन केंटकी वासियों को। भाई अब तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपना घर हो। मैंने सोचा था कि यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग ही अधिक होंगे, मगर लगता है पूरा केंटकी प्रदेश यहाँ चला आया है। आप जानते हैं कि कुछ माह पहले केंटकी में तेल प्राप्त हुआ है, तो संभव है कुछ लोग इस ओर चले आए हों। और तब मुझे याद आ रहा है जब पापा आते और खाने के लिए हाथ मुंह धोया करते थे, वह अपनी उन छोटी मजबूत खुरदुरी बाहों से आस्तीनों को ऊपर चढ़ाते और आस्तीनों को ऊपर चढ़ाने के बाद अपने चेहरे पर पानी के छींटे देते, तब उनकी मांसपेशियां उनके हाथों में से उछलती थी। और मैं कहता था कि मेरे पापा 150 वर्षों तक जीवित रहेंगे। वो इतने बलवान थे, 52 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला नगर नहीं है, ये सच है, हम स्थिर नहीं रह सकते। आइए हम सब अब अतीत की सैर करें। आप सभी की भी अलग अलग जीवन कथाएं हैं, जैसे कि मेरी जीवन कथा है। और ये अच्छा है कि कभी कभी यादों के झरोखों से पर्दे उठाए जाएं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आइए पीछे यादों में चलें, बीते समय में थोड़ी देर के लिए चलें और हम सभी छोटे बच्चों के रूप में अपने अनुभवों की यादों में पहुंच जाएं। अपने जीवन वृत्तांत के पहले भाग को बस मैं थोड़ा सा छूता हुआ चलूंगा, क्योंकि वो पुस्तक के रूप में आपके पास मौजूद है। कंटकी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र की ओर ऊपर जाते हुए एक पहाड़ी झोपड़े या केबिन में मेरा जन्म हुआ था। उसमें केवल एक ही कमरा था जिसमें हम रहते थे और फर्श एकदम कच्चा था, लकड़ी तक उसमें नहीं बिछी थी, वह एकदम से कच्चा फर्श था और एक पेड़ के ठुंड को ऊपर से काट दिया गया था और उसकी तीन टांगें थी, यही हमारी मेज थी और हम सभी छोटे छोटे ब्रनम बच्चे उसी मेज के चारों ओर बैठते थे। हम उस पुराने केबिन नुमा घर के बाहर धूल में घूमते रहते थे। आप जानिए कि हम सब छोटे बच्चे बाहर धूल मिट्टी में सने ऐसे लगते थे मानो ओपोसमस नामक पशु का झुंड धूल में लौट रहा हो। हम आठ भाई और एक बहन थे। हमारी बहन हम लड़कों के झुंड में बहुत परेशान रहती थी। उन दिनों हम उसे कितना तंग किया करते थे यह सोचकर आज भी उसके सामने सिर झुकाए खड़े रहते हैं। वह हमारे साथ कहीं जा पाती थी क्योंकि हम उसकी पीठ पर चड्डी खाने के लिए उसे तंग करते थे, वो हमारे साथ नहीं जा पाती थी और वो एक लड़की थी, अतः वह हमारे साथ नहीं जा पाती थी। उस मेज के साथ हमारे पास दो कुर्सियां थीं और वे पेड़ की छाल से बनाई गई थीं। अमेरिका में होने वाले हिकोरी नामक वृक्ष के छोटे छोटे पौधों को आसपास बिछाकर उनके निचले सिरों को हिकोरी के बक्कलों से बांधकर बैठने योग्य ये कुर्सी तैयार करी गई थी। क्या कभी किसी ने हिकोरी छाल की कुर्सी के बारे में सुना है? और मैं आज भी अपनी माँ की वह आवाज सुन पा रहा हूँ। बाद में हमें एक और निवास स्थान मिल गया था जहाँ लकड़ी का फर्श था और माँ बच्चों को गोदी में लिए जब उस पुरानी कुर्सी को सरकाती थी तो लकड़ी के फर्श पर खटर पटर की आवाज होती थी। जब माँ बर्तन धो रही होती या कुछ और काम कर रही होती तो मुझे ये देखना होता था कि छोटे भाई बाहर ना निकल जाए। तब वह उस कुर्सी को उलट कर दरवाजे के सामने फंसा देती थी जब माँ को बाहर पानी आदि लेने जाना होता था ताकि बच्चे घर से बाहर न चले जाए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ 15 वर्ष और पापा 18 वर्ष के थे। 9 बच्चों में मैं सबसे बड़ा था और उन्होंने मुझे बताया था कि जिस सुबह मेरा जन्म हुआ, अब देखिए कि हम बहुत निर्धन थे, गरीबों से भी गरीब थे और उस छोटे से कमरे में कोई रोशनदान तक न था। एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जो खिड़की की जगह था। मुझे शक है कि आपने वैसा कभी नहीं देखा होगा। खिड़की की जगह एक दरवाजा था, लकड़ी का छोटा सा दरवाजा जिसे दिन में खुला और रात में बंद रखते। उन दिनों रोशनी के लिए न बिजली थी न ही हमारे पास मिट्टी का तेल था। हमारे पास वो साधन था जिसे आप ग्रीस लैंप के नाम से पुकारते हैं। अब मुझे पता नहीं कि आपने कभी वैसा लैंप देखा है कि वो क्या कैसा होता है। भाई क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी चीड़ या देवदार पेड़ की गांठ को जलाया है? कभी चीड़ की गांठ लेकर उसे जलाकर किसी टिन के ऊपर रख दें तो वो जलता रहेगा। हाँ, उससे धुआं आदि तो निकलता रहता था, मगर हमारे घर में तो वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था जिसमें आग लग जाती, अतः सारा धुआं केबिन में ही जज्ब होता रहता था। वह धुआं भली प्रकार से केबिन में छत पर जमता रहता क्योंकि ऊपर छत में असंख्य दरारें थीं जिनमें से धुआं जम सकता था। मेरा जन्म 6 अप्रैल 1909 को हुआ था। आप जानिए कि इस प्रकार से मैं इस समय 25 वर्ष से जरा सी अधिक आयु का हूँ। और मेरी माँ ने बताया था कि सुबह मेरा जन्म जब हुआ उन्होंने उस केबिन में छोटी सी खिड़की खोल दी थी। अब देखिए कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, वहाँ केवल दाई थी और वह दाई मेरी दादी थी। जब मेरा जन्म हुआ और मैंने पहली किलकारी मारी या रोया तो मेरी माँ ने अपने बच्चे को देखना चाहा और उस समय वो खुद भी एक बच्चे से अधिक नहीं थी। और जब सुबह पौ फटते ही लगभग 5 उन्होंने वह छोटी सी खिड़की खोली तो एक छोटी सी रॉबिन नामक चिड़िया खिड़की के पास एक छोटी सी झाड़ी में बैठी थी, जैसा कि आपने उसका चित्र मेरी पुस्तक माई लाइफ स्टोरी में देखा है। वहाँ एक बूढ़ी रॉबिन चिड़िया बैठी वहाँ बैठ के अपनी शक्ति भर जोर से गा रही थी। मैंने हमेशा इस रॉबिन पक्षी से प्रेम किया है। आप लड़के लोग जो रेडियो पर ये प्रसारण सुन रहे हैं, कभी मेरी इस चिड़िया को मत मारना। देखें कि वो मेरी चिड़ियाएं हैं। क्या आपने कभी रॉबिन के बारे में कहावत सुनी है कि उसका पोटा लाल कैसे हुआ? मैं यहाँ थोड़ा रुक कर बताना चाहता हूँ, उसका पोटा लाल कैसे हुआ। राजाओं का राजा एक दिन सलीब पर चढ़ा हुआ मर रहा था। वह दुख उठा रहा था और कोई उसके पास सहायता करने नहीं आ रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। और वहाँ एक छोटी सी भूरी चिड़िया थी जो सलीब में गड़ी उन तीनों को बाहर निकालना चाहती थी। और उस चिड़िया ने सलीब के चक्कर पर चक्कर काटना शुरू किया और उन तीनों को हिला हिला कर निकालने की कोशिश में झटके देती रही। वह बहुत छोटी थी और उन तीनों को नहीं निकाल सकती, और इस प्रयास में उसका छोटा सा सीना पूरा लहू से लाल हो गया। अब से इस रॉबिन का सीना आज तक लाल है। इस चिड़िया को मत मारना, इसे छोड़ देना। वह खिड़की के पास बैठी चहचहा रही थी जैसे कि रॉबिन गाया करती है, और पापा ने खिड़की के पट को पीछे धकेला। और जब उन्होंने खिड़की को पीछे की ओर पूरा खोला तो मेरी माँ कहती है कि वह प्रकाश जो आपने चित्र में देखा है, वह एक दायरे में ढलता हुआ खिड़की से भीतर आकर मेरे पलंग के ऊपर ठहर गया था। मेरी दादी माँ को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या कहे। अब देखिए कि हमारा परिवार धार्मिक परिवार नहीं था। मेरे पारिवारिक जन कैथोलिक मत के हैं। मेरे माँ बाप दोनों आयरिश मूल के हैं, पूरी तरह से आयरिश ब्रनहम। मेरी माँ हार्वे की थी, उनके पिता ने रेड इंडियन से विवाह किया था। बस यही एक बात थी जिसने की आयरिश खून की कड़ी को तोड़ा था। मेरे माँ बाप गिरजे भी नहीं जाया करते थे, उनका विवाह भी गिरजे में ना होकर बाहर हुआ था। उनका वास्तव में कोई धर्म नहीं था, और उधर वहाँ पहाड़ों में कैथोलिक गिरजा तक भी नहीं था। मेरे माँ बाप उस क्षेत्र में बसने वाले प्रथम लोगों में से थे। बस दो ब्रनहम पहले वहाँ आए, और उन्हीं से ब्रनहम परिवार की सारी पीढ़ी उत्पन्न हुई। यही हमारे परिवार की वंशावली है। और जब उन्होंने वो खिड़की खोली और उससे वह प्रकाश भीतर आकर ठहर गया तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। माँ ने मुझे बताया था कि पापा उनके लिए नया चोला खरीद कर लाए थे जो खास तौर से मेरे जन्म के लिए लाया गया था। पापा खुद अपना पुराना ओवरकोट पहने, जेबों में हाथ डाले इस प्रकाश को देखकर खड़े से रह गए थे। वे उसी मुद्रा में खड़े थे जैसे कि लकड़हारे आदि अक्सर खड़े होते हैं। उस प्रकाश के इस प्रकार से वहाँ ठहर जाने से वे डर गए थे। जब मैं शायद 10 दिन का रहा होगा या लगभग इतना ही बड़ा था, तब वे मुझे एक छोटे से बैप्टिस्ट गिरजे में ले गए जिसे पासम किंगडम नाम से पुकारा जाता था। पासम किंगडम बैप्टिस्ट चर्च था। ये भी क्या खूब नाम। उस गिरजे में सर्किट का पादरी दो माह में एक बार आया करता था। लोग वहाँ एक छोटी सी प्रार्थना सभा में आते और कुछ गीत भजन गाया करते थे, लेकिन उपदेश आदि उन्हें उस सर्किट के सेवक से यदा कदा ही सुनने को मिलता था। वे लोग उस पादरी को साल में एक बार चंदे के रूप में कद्दूओं या ऐसी ही उन चीजों से भरा एक थैला भेंट किया करते थे जिन्हें लोग आपस में जमा करते थे। और वह बूढ़ा प्रचारक वहाँ आया और उसने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। गिरजे जाने की यही मेरी पहली यात्रा थी। जब मैं लगभग 2 वर्ष से कुछ ही अधिक आयु का था तब पहला दर्शन मुझे मिला। वही घर वालों ने आसपास पहाड़ पर सभी को बता दिया था कि एक प्रकाश कमरे में आकर ठहर गया था। अतः लोगों ने अपना अनुमान लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सूर्य का प्रकाश होगा जो अंदर दर्पण पर पड़कर चमका होगा, लेकिन घर के भीतर तो कोई दर्पण था ही नहीं और तब तक सूरज भी नहीं निकला था, क्योंकि ये बात तो बहुत सुबह 5 बजे की थी। और तब धीरे धीरे लोग इस बात को नजरअंदाज कर गए। और जब मैं शायद 3 वर्ष का रहा हूँगा, अब देखिए कि मुझे ये सब बताने में पूरी ईमानदारी निभानी है, और कई बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता, और चाहता तो हूँ कि उन्हें छोड़ दूँ और ना कहूँ, मगर बात हमेशा सत्य कहनी चाहिए, चाहे वे अपने बारे में आपको कहनी हो या लोगों के बारे में। उसकी बाबत ईमानदार होना चाहिए और जो बात है वही कहिए, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे पिता धार्मिक मनुष्य बनने की बात से कोसों दूर थे। वह अपनी तरह के अजीब से पहाड़ी लड़के थे जो हर समय लगातार शराब पीते थे। एक बार वह एक झगड़े में बड़ी परेशानी में फंस गए थे, और एक पार्टी में जो ऊपर पहाड़ पर कहीं हुई थी वहाँ घमासान झगड़ा हो गया था, और मारपीट चाकूबाजी और गोलीबारी में 3 व्यक्ति लगभग मरने को हो गए थे। और पापा जी इस लड़ाई में नायकों में से एक थे। क्योंकि उनका एक दोस्त इस लड़ाई में घायल हो गया था और उसने किसी को कुर्सी खींच कर मार दी थी और इस मनुष्य ने अपना चाकू निकाल लिया था और फर्श पर पड़े पापा के दोस्त के सीने में उसे घोंपने को था। पापा अपने मित्र की ओर से बोल पड़े थे और वो वास्तव में बड़ी भयंकर लड़ाई रही होगी, क्योंकि बाद में पापा को पकड़ने के लिए बक्सविले नामक स्थान तक, जो कई मील दूर था, परगनाधिकारी स्वयं घोड़े पर सवार होकर गया था। वो आदमी वहाँ मृत प्राय अवस्था में पड़ा था। हो सकता है उसके कुछ अजीज इस समय मेरी ये बात सुन भी रहे हों। मैं उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम विल यार्ब्रो था। उसके कुछ लड़के कैलिफोर्निया में हैं। लेकिन वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली सांड जितना बलवान था, जिसने अपने ही एक आदमी को बाड़े की लोहे की तारों में दबा दबा कर जान से मार डाला था। और वो आदमी बहुत ताकतवर और दुष्ट था। अतः उसके और पापा के बीच घमासान चाकूबाजी हुई थी और मेरे पापा ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। अतः उन्हें कंटकी छोड़कर भागना पड़ा था और वे नदी पार कर इंडियाना चले आए थे। मेरे पापा के एक भाई थे जो लुइजविले कंटकी में उन दिनों रह रहे थे। वुड मोजेक सामिल्स लुइजविले कंटकी के सहायक अधीक्षक नियुक्त थे, इसलिए पापा अपने उन बड़े भाई को ढूंढने वहाँ गए। पापा अपने 17 भाइयों में सबसे छोटे थे, अतः वह अपने बड़े भाई को खोजने वहाँ चले गए और लगभग एक वर्ष तक वे वहीं रहे। वे वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में थी। और उनके बारे में हमें सूचना एक पत्र द्वारा मिली, जो एक और काल्पनिक नाम से भेजा गया था, लेकिन वो पहले ही माँ को बता गए थे कि वे इस प्रकार से अपनी सूचना भेजेंगे। मुझे याद आ रहा है कि एक दिन झरने के पास, जो हमारे केबिन के बिल्कुल पीछे था, और उस समय मेरे बाद का भाई, जो उम्र में लगभग 11 माह छोटा था और अभी तक वो घुटने घुटने चलता था, मेरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं उससे कीचड़ में उस पत्थर को कितनी दूर तक फेंक सकता। झरने ने कुछ दूर बहकर रुख बदल लिया था और दूर तक धरती पर कीचड़ थी। और तभी मैंने एक चिड़िया को एक पेड़ पर गीत गाते या चहचहाते हुए सुना। मैंने नजरें ऊपर उठाकर उस पेड़ की ओर देखा और वह चिड़िया उड़ गई। और जब ऐसा हुआ तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं ये जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना छोटा था कि ये सब बातें ना तो सोच सकता हूँ और ना याद रख सकता हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर, जो इस धरती, आकाश, स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, सबका न्याय करने वाला है, ये जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो उस पेड़ पर, उस जगह से जहाँ वो चिड़िया बैठी थी, वहाँ से एक आवाज इस प्रकार से आई, मानो हवा का झोंका किसी झाड़ी में से सरसरा कर गुजरा हो। उस आवाज ने कहा कि तू न्यू अल्बनी नामक शहर के निकट रहा करेगा। और 3 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक मैं न्यू अल्बनी नगर इंडियाना से 3 मील की दूरी पर स्थित जगह में ही रह रहा हूँ। मैं घर गया और ये सब बातें मैंने अपनी माँ को बताई। भाई, उन्होंने ये समझा कि ये मेरा ख्वाब था या कुछ इसी प्रकार की बात समझी। और बाद में हम इंडियाना प्रांत में रहने लगे और पिताजी एक अमीर व्यक्ति श्री वाथेन के यहाँ काम करने लगे, और वे वाथेन शराब कारखाने के मालिक थे। उनकी पूंजी अनेक उद्योगों में शेयर्स के रूप में लगी हुई थी। बेसबॉल आदि वगैरह में उनका पैसा लगा था, वो करोड़पति गिने जाते थे। और हम उनके घर के पास ही रहा करते थे। पापा हालांकि निर्धन थे, मगर बिना शराब के नहीं रह सकते थे। अतः एक विस्की बनाने की भट्टी में वो काम करने लगे। और तब सभी बच्चों में बड़ा होने के कारण मुझ पर बड़ी कठिनाइयां आ पड़ी। जब वे लोग विस्की बना रहे होते थे तो मुझे उस भट्टी की चरखियों को ठंडा रखने के लिए पानी भर भर कर लाना पड़ता था। उसके बाद पिताजी उन्हें बेचने जाते थे। अब बाद में पापा को 2 या 3 भट्टी काम मिल गया था। मेरी जीवन कथा का ये वो भाग है जिसे मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर यही सच्चाई है। और एक दिन यूं हुआ कि मैं खलियान से घर की ओर रोता हुआ पहुंचा, क्योंकि उस शराब की भट्टी के पीछे एक तालाब था जिसमें से वे लोग बर्फ काट कर प्रयोग में लाते थे। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से बर्फ को तोड़कर बुरादे में दबाकर रखा जाता है। बर्फ को सुरक्षित रखने का यही तरीका श्री वाथेन ने पूरे प्रांत भर में अपना रखा था। और पिताजी उनके ड्राइवर थे, निजी ड्राइवर। ये तालाब उस समय मछलियों से भरा होता था। जब वे लोग उसमें से बर्फ काट कर लकड़ी के बुरादे में दबा दिया करते थे, और जब गर्मी के दिनों में उस तालाब में बर्फ पिघल जाती थी तो मैं समझता हूँ उसका पानी साफ दिखाई देता था और लगता था जैसे वह बर्फ की कोई झील हो। वे लोग उसके पानी को पीने के लिए नहीं वरन पीने के पानी को ठंडा रखने के प्रयोग में लाते थे और अपने दूध आदि बर्तनों और बाल्टियों के चारों ओर उस पानी को भर देते थे ताकि वे ठंडे रहें। और एक दिन इस तालाब से जो पीछे की ओर था और लगभग एक सिटी ब्लॉक की दूरी पर था, मैं पानी भरकर लौट रहा था। मैं चीख चिल्ला रहा था, कौन नहीं चीखता ऐसे में, क्योंकि मैं तभी स्कूल से आया था और बाकी सभी लड़के मछली पकड़ने तालाब पर गए थे। मुझे मछली पकड़ने और उनका शिकार खेलने का बड़ा शौक था, अतः वे सभी तो मछली का शिकार खेलने गए थे, मगर मुझे उस भट्टी के लिए पानी भरना था और मैं कह कुछ नहीं सकता था, बोलने की मनाही थी। और ये बड़ी मेहनत का काम था। मुझे याद है कि मैं अपने ठूंठ से अंगूठे से डगमगाता हुआ चला आ रहा था। मैंने अपने पांव की अंगूठी के नीचे एक डंठल बांध रखा था ताकि वह धूल से बचा रहे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? बस अपने अंगूठे के नीचे एक भुट्टे का डंठल डोरी से इस तरह कस लीजिए, यह आपके अंगूठे को कछुए की गर्दन की तरह से ऊपर उठाकर रखेगा। आप समझे, उसे ऊपर को उठाकर रखेगा। आप मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ दूर से पहचान सकते थे, क्योंकि मेरे अंगूठे के नीचे भुट्टे का ठूंठ बंधा रहा करता था और मैं डगमगाता सा चलता दिखाई देता था। मेरे पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं थे, हम जूते नहीं पहनते थे, कभी कभी तो आधे जाड़े बीत जाया करते थे और हम बिना जूतों के ही रहते थे। जूते पहनने की बात तो तभी होती जब कभी कोई हमें कोई जूते दे देता था, और कपड़े भी हम वही पहन पाते थे जो कोई हमें दान में देता था। मैं उस पेड़ के नीचे रुक गया और बैठ कर चीखे मार रहा था। सितंबर का महीना था, मैं चिल्ला रहा था क्योंकि मैं मछली का शिकार खेलने जाना चाहता था। मुझे एक छोटी सी शीरे वाली बाल्टी से पानी की कई टंकियां भरनी थी और शीरे की बाल्टी बस इतनी ऊंची थी केवल आधा गैलन पानी ही उसमें आता था। मैं चिल्ला रहा था क्योंकि मैं उस समय बस 7 वर्ष का एक बच्चा था। मैं उन दो छोटी छोटी बाल्टियों से पानी निकालता और उन बड़ी बड़ी टंकियों में से भरता, वापस आता, पानी लेता, टबों में भरता, फिर वापस आता था और इस तरह से पानी केवल उसी तालाब से हमें भरना पड़ता था। और रात को पापा को उन लोगों के साथ काम करके विस्की शराब के नए बैच घर में बनाने थे और मैं रो रहा था कि तभी सहसा मैंने एक आवाज सुनी जो हवा के बवंडर की आवाज की तरह थी। वह आवाज कुछ कुछ इस प्रकार से थी, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत जोर से नहीं थी और वो ऐसे थी, बस इस तरह की आवाज थी। उस समय सारा वातावरण शांत था और मैंने चारों ओर देखा और आप देखिए कि छोटा सा हवा का बवंडर मात्र था जिसे आप चक्रवात कहते हैं। जाड़े के दिनों में ये बवंडर अक्सर उठते हैं और अनाज आदि के खेतों में से धूल पत्तियां आदि इसमें गोल गोल घूमने लगती हैं। जाड़े के दिनों में पतझड़ के मौसम में ये पत्तियां झड़ने वाली स्थिति में होती हैं। मैं उस समय एक बड़े सफेद चिनार के वृक्ष के तले था जो खलियान और घर के आधे मार्ग में स्थित था और मैंने वो शोर सुना और मैंने चारों ओर देखा और वहाँ इतना शांत वातावरण था जितना कि यहाँ इस कमरे में समय है। एक पत्ता भी कहीं नहीं खड़क रहा था, कोई शोर नहीं था। और मैंने सोचा कि वो आवाज कहाँ से आई थी, मैं एक बालक ही तो था, तो सोचने लगा कि कहीं बाहर दूर से आई होगी। और वह आवाज तेज और तेज होती चली गई। मैं एक दो बार और रोया चिल्लाया और फिर जहाँ बैठा था आराम कर रहा था वहाँ से उठा, अपनी बाल्टियाँ उठाई और पगडंडी की ओर बढ़ गया। और मैं उस बड़े पेड़ की शाखाओं से कुछ फीट दूर ही गया था कि हे प्रभु, उसकी शाखाओं से हवा के बवंडर का सा शब्द सुनाई दिया। मैं देखने के लिए पीछे घूमा और उस पेड़ की आधी ऊंचाई के करीब एक और चक्रवात बना हुआ था जो कि उस पेड़ की पत्तियों के चारों ओर जोर जोर से घूम रहा था। भाई मैंने सोचा कि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, वर्ष के इन दिनों में चक्रवात आदि आते ही रहते हैं। वैसे भी पतझड़ के दिन थे, हवा के बवंडर आने ही थे, हम इन्हें चक्रवात कहकर पुकारा करते थे और ये धूल भरे जोर से घूमती हवा के होते थे। आपने रेगिस्तानी इलाकों में इस प्रकार के चक्रवात उठते देखे होंगे, वैसे ही था। अतः मैं उस बवंडर को देखता रहा मगर वो वहाँ से नहीं हटा। आमतौर पर एक आध क्षण बाद ये चक्रवात आगे को बढ़ जाया करते हैं, लेकिन इस समय तो वो बवंडर 2 मिनट से भी अधिक समय से उसी स्थान पर स्थिर था। मैं अपने पथ पर आगे बढ़ने को हुआ और फिर उसे पीछे मुड़कर देखा और जब मैं घूमा तो एक ऐसी मानवीय आवाज सुनाई दी जैसी कि मेरी आवाज है और कहा गया कि तुम कभी भी बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि मत पीना और अपने शरीर को किसी भी रीत से दूषित न करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक खास काम करने को दिया जाएगा। इस आवाज को सुनकर भय से मेरा तो दम सा निकल गया। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। मैं अपनी बाल्टियां छोड़कर पूरे जोर से चिल्लाता हुआ जितना तेज भाग सकता था भागता हुआ अपने घर पहुंचा। और उस क्षेत्र में कॉपर हेड नामक विषैले सांप पाए जाते हैं। मेरी माँ ने सोचा कि बाग के पास से आते हुए शायद मेरा पांव किसी सांप के ऊपर पड़ गया है, अतएव मैं ये दौड़ कर आई और मैं कूद कर उसकी बाहों में जा पहुँचा और रोने लगा और अपनी माँ को चूमने और प्यार करने लगा। मेरी माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें सांप ने डसा है? मैंने कहा नहीं मामा, वहाँ उस पेड़ के तले कोई आदमी है। और तब मेरी माँ ने कहा ओ बिल्ली बिल्ली छोड़ो ये रहने दो। और उसने पूछा क्या तुम ये बातें खत्म करके अब सोना चाहोगे? मैंने कहा नहीं मामा जी, वहाँ उस पेड़ के तले एक आदमी है, उस पेड़ पर आदमी है और उसने मुझसे कभी भी शराब सिगरेट आदि ना पीने को कहा है। उसने कहा है कि विस्की वगैरह प्रयोग मत करना। जब मैं उस शराब की भट्टी के लिए पानी आदि भर रहा था और उसने मुझसे कहा था कि कभी शराब मत पीना और अपने शरीर को किसी भी तरह से दूषित मत करना। आप जानते हैं कि ऐसा करना अनैतिकता है और जवानी के दिनों में भी गलत औरतों से परे रहना है। अपनी पूरी समझ और जानकारी से कह सकता हूं कि मैं कभी इस प्रकार का दोषी नहीं पाया गया। प्रभु मेरी ऐसी मामलों में सहायता करता रहा है जैसा कि आप आगे देखेंगे। अतः उस आवाज ने कहा शराब व धूम्रपान सेवन कभी मत करना और अपने शरीर को किसी भी तरह से दूषित न करना, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक काम करने को दिया जाएगा। भाई मैंने ये सब बातें जब मामा जी को बताई तो वो बस मेरी बात पर हंस दी और मुझ पर तो जैसे कोई दौरा सा पड़ गया था। उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़ा सा दुर्बल महसूस कर रहा है, बस नर्वस है, इतनी सी बात है। अतः माँ ने मुझे बिस्तर पर आराम करने को लिटा दिया और उस दिन से लेकर आज तक फिर कभी मैं उस पेड़ के पास से नहीं गुजरा हूँ। मैं डर गया था। मैं बाग के दूसरी ओर से आया जाया करता था क्योंकि मेरा विचार था कि उस पेड़ पर कोई आदमी था जो मुझसे बोला था। वो बड़ी गहरी सी आवाज थी जो बोली थी। और उस घटना के एक महीने बाद की बात है, मैं अपने भाइयों के साथ घर के सामने पत्थर की कंकरी फेंक कर खेल रहा था कि अचानक मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, अजीब सा महसूस हुआ और मैं खेल छोड़कर एक पेड़ के तले बैठ गया। मैंने पाया कि मैं ओहियो नदी के किनारे के ठीक ऊपर कहीं पहुंच गया हूं। और वहां से मैंने जेफरसन विले की ओर देखा कि एक पुल नदी की चौड़ाई पर बनता चला जा रहा है और मैंने देखा कि 16 आदमी जिन्हें मैंने गिना था वे ऊंचाई से नीचे उस पुल पर गिरकर जान गंवा चुके हैं। मैं तेजी से दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उसे ये सब बताया और उसने सोचा कि मैं सोकर नींद में मैंने कोई सपना देखा होगा, लेकिन मेरे माँ बाप ने इन बातों को हृदय में रख लिया था। और उस घटना के 22 सालों के बाद आज उसी जगह म्यूनिसिपल ब्रिज बना हुआ है जिसे पार कर आप में से बहुत से लोग उधर जाते हैं। इस पुल को नदी पर मेरे देखे स्थान पर ही बनाया गया है और इसके निर्माण करते समय 16 मनुष्यों की जान गई है। परमेश्वर की बात एकदम सत्य होती है, कभी भी गलत नहीं होती। जैसा कि आप परमेश्वर की सामर्थ और वचन को सत्य प्रकट होते यहाँ इस सभागार में देख रहे हैं, वैसे ही हर समय वो सच होती है। अब देखिए कि घर वालों ने समझा कि मैं डर गया हूँ। ये सच है कि मैं एक नर्वस या दुर्बल मन स्थिति का व्यक्ति हूँ। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप पाएंगे कि आत्मिक स्थितियों से जुड़े व्यक्ति नर्वस ही होते हैं। आप कवियों और भविष्यवक्ताओं को देखिए। आप विलियम कॉपर को लीजिए जिसने वो मशहूर गीत लिखा है, देयर इज ए फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड ड्रॉन फ्रॉम इमैनुएल्स वीन्स। यहाँ एक लहू से भरा हुआ निर्जर है जिसे इमैनुएल की नसों में से खींचा गया है। आप इस गीत को जानते हैं? मैं इस कवि की कब्र पर अभी अधिक दिन नहीं हुए एक दिन खड़ा था, मेरे साथ भाई जूलियस, नहीं पता नहीं कौन, हाँ ठीक है, भाई जूलियस वहाँ कब्र पर मेरे साथ खड़े थे। देखिए कि उस गीत को लिखने की प्रेरणा उसे मिली थी, मगर जब वो गीत लिख चुका और साधारण अवस्था में लौट कर आया तो उसने नदी में आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। देखिए ये तब हुआ जब वो प्रेरणा वो आत्मा उससे जुदा हो गई। कवि और लेखक नहीं, मेरा मतलब कवि और भविष्य दुखता ऐसे ही होते हैं। एलिया को लीजिए जब वो पहाड़ पर खड़ा था और उसने आकाश स्वर्ग से आग और वर्षा को बुलाकर वेदी पर बरसाया था, लेकिन जब आत्मा में नहीं था तब एक औरत इजाबेल की धमकी से डर कर भाग खड़ा हुआ था और 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उसे फिर से एक गुफा में से बाहर निकाला था। योना को लीजिए जिसको परमेश्वर ने निनवे में प्रचार करने के लिए अभिषिक्त किया था, वह तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा रहा जब तक कि निनवे शहर जो कि हमारे सेंट लुइस जितना बड़ा था उसने राख डाल वो टाट ओढ़कर पश्चाताप न कर लिया। और जब आत्मा उसे छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? आत्मा से बाहर आने पर हम देखते हैं कि वो एक पर्वत पर खड़ा होकर परमेश्वर से मौत मांग रहा है। अब देखिए कि सब बातें खास आत्मिक प्रेरणा से होती हैं और जब ये आपके साथ घटती हैं तो कुछ अजीब सा होता है। जब मैं बालक से जवानी की ओर बढ़ा, अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि थोड़े से और समय में अपनी बात पूरी कर सकूं। जब मैं जवान हुआ तो मेरे विचार भी अन्य नवयुवकों की तरह ही से थे। आप जानते हैं कि स्कूल जाता समय और लड़कियों से मुलाकात होती थी। देखिए, मैं वास्तव में बड़ा शर्मीला था। खैर, आखिरकार एक छोटी सी लड़की मेरी मित्र बन गई और अन्य सभी छोटे बच्चों की तरह, जो मैं सोचता हूँ बस 15 वर्ष की उम्र के रहे होंगे। वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें पंडुकी की तरह बड़ी बड़ी, दांत मोतियों की तरह, गर्दन बत्तख की तरह थी। वो वास्तव में बहुत प्यारी सी लड़की थी। एक और छोटा लड़का था, हम सभी उन दिनों छोटे से बालक थे। उसने अपने पिता की मॉडल टी फोर्ड गाड़ी ले ली और हमने लड़कियों के साथ सैर सपाटे का कार्यक्रम मना लिया। हम उनके साथ बाहर घूमने जाने वाले थे। हमारे पास लगभग 2 गैलन पेट्रोल या गैसोलीन था। उस गाड़ी को चलाने के लिए पिछले पहिए को जैक द्वारा ऊपर धुरी में फंसाना होता था। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं कि उन दिनों में इसी प्रकार की गाड़ियां हुआ करती थीं। लेकिन हमारा सफर बड़ी अच्छी प्रकार चलता रहा। तो मेरे पास कुछ निकल या पैसे थे और हम एक स्थान पर रुके जहाँ एक निकल में एक हैम सैंडविच बिकता था। और भैया, मैं तो उस समय खुद को बड़ा अमीर समझ रहा था क्योंकि मैं 4 सैंडविच खरीद सकता था। और जब हम सैंडविच खा चुके और कोका कोला पी चुके तो मैं बोतल उठाकर दुकान में वापस देने गया। और जब मैं वापस आया तो आश्चर्यचकित रह गया। और वह वे दिन थे जब महिलाएं नैतिक पतन की ओर झुकी ही थी। और मैंने देखा कि मेरी वो प्यारी पंडुकी, वो लड़की सिगरेट पी रही थी। भाई देखो, धूम्रपान करने वाली महिलाओं के प्रति सदैव ही मेरी एक विशेष धारणा रही है और उस दिन से आज तक उस धारणा में जरा भी बदलाव नहीं आया है। यह सच है, यह सच है कि सबसे गिरी हुई बात स्त्री के लिए यही है कि वह धूम्रपान करे। अब ये बात सुनकर सिगरेट निर्माता कंपनियां मेरे पीछे पड़ सकती हैं, मगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये सब धूम्रपान करवाना शैतान की चाल है। हमारे इस देश में धूम्रपान सबसे बड़ा कातिल और नुकसान पहुंचाने वाला है। मैं अपने लड़के को गुनाह करे शराब के रूप में, शराबी के रूप में देख सकता हूँ, धूम्रपान करने वाला नहीं। यह एक सच्चाई है। एक बार को मैं अपनी पत्नी को शराब में शराबोर फर्श पर पड़े देख सकता हूँ, बजाय इसके कि वह सिगरेट पीती दिखाई दे। अब परमेश्वर का आत्मा जो मुझ में है, और यदि वह पवित्र आत्मा वाकई परमेश्वर का है, क्योंकि आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं, वो कहता है आप जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपके लिए बचने का अवसर बहुत जरा सा होगा। क्योंकि आपने कई बार स्वयं देखा है कि सभाओं में पवित्र आत्मा धूम्रपान करने वालों को किस प्रकार अपराधी ठहराता रहा है। यह वास्तव में बड़ी भयंकर चीज है। इस लक्ष्य से अलग रहिए। महिलाओं, यदि आप आज तक इस गुनाह को करती रही हैं, तो यीशु मसीह के नाम में इससे परे हो जाइए। ये आपको तोड़ कर रख देगा, खत्म कर देगा। ये धूम्रपान करना मानो ढेर सारा कैंसर अपने भीतर भरना है। डॉक्टर लोग इस बारे में चेतावनी देते हैं, फिर भी किस प्रकार से ये सामग्री लोगों को बेची जाती है। अगर आप किसी दवाई विक्रेता के यहाँ जाकर कहें कि मुझे 50 सेंट मूल्य का कैंसर दे दो, और यदि वो दुकानदार दे दे तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब आप 50 सेंट मूल्य की सिगरेटें खरीदते हैं तो ये कैंसर खरीदने के समान ही है। डॉक्टर ऐसा ही कहते हैं। ओ, ये देश पैसे के पीछे मतवाला बना है। धूम्रपान बहुत बुरी चीज है, यह प्राण घातक है, यह सिद्ध हो चुका है। जब मैंने उस प्यारी सी बालिका को हाथों में सिगरेट दबाए मुद्रा में देखा तो मुझे उसकी उस हालत से घोर दुख पहुंचा, क्योंकि मैं वास्तव में सोचता था कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब देखिए कि लोग मुझे महिलाओं से घृणा करने वाला समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रकार से उनके विरुद्ध कहता आया हूँ, मगर बहनों, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ। मैं केवल आज की आधुनिक औरतों के व्यवहार के विरुद्ध हूँ। ये सच है, अच्छी महिलाओं को अपने आप को पूरी तरह ढक कर रखना चाहिए। लेकिन मुझे याद है जहाँ जब मेरे पापा की शराब की भट्टी थी, मुझे वहाँ पानी भरने और अन्य सामान लेकर जाना पड़ता था। और वहाँ मैंने देखा है कि वे लड़कियाँ जो 17-18 वर्ष से बड़ी आयु की नहीं होती थी, वे मेरे जैसी आज की उम्र के लोगों के साथ शराब पिया करती थी। और बाद में उन लोगों को, उन लड़कियों को ही ठीक स्थिति में लाने के लिए काली कॉफी पिलाई जाती थी, ताकि वो ठीक ठाक घर जाकर अपने पति के लिए भोजन आदि तैयार कर सकें। ओ, उस समय उनके लिए मैं कुछ इस तरह से कहा करता था, उनकी हालत इतनी गिर चुकी है कि उन्हें एक साफ सुथरी गोली मारना भी उचित न होगा। ये सच बात है। और मैं ऐसी महिलाओं से घृणा करता रहा हूँ, ये सच बात है। और मैं फिर वैसी ही धारणा उनके लिए नरक हूँ, इसके लिए मुझे प्रत्येक विचार को ध्यान पूर्वक देखना होता है। किंतु एक भली महिला मानव पुरुष के ताज में जड़ा मोती है, उस महिला का आदर सम्मान किया जाना चाहिए। मेरी माँ एक महिला है, मेरी पत्नी महिला है और वे बहुत प्यारी है। और मेरी तो हजारों मसीही बहनें हैं जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। लेकिन यह महिलाओं को देखना है कि वे परमेश्वर ने उन्हें जो मातृत्व वास्तविक पत्नी या रानी का दर्जा दिया है, वे उसका सम्मान करें। वह उत्तम से उत्तम चीज जो परमेश्वर पुरुषों को दे सकता था, वह उसकी अच्छी पत्नी ही है। उद्धार के अलावा एक पत्नी ही सबसे बड़ी अच्छी है अगर वो भली है। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है तो सुलेमान कहता है कि एक अच्छी पत्नी पुरुष के मुकुट में जड़ा मोती है, किंतु जो अच्छी नहीं है वह मानो उसके लहू में मिला जल है। और ये सच है कि इससे ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। अतः मेरे भाई, अगर आपके पास एक भली पत्नी है तो उसको सबसे अधिक सम्मान दें। यह ठीक है, एक वास्तविक भली पत्नी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और बच्चों, अगर आपकी माँ हकीकत में भली माँ है जो अपने घर रहती है और आपकी देखभाल की कोशिश में लगी रहती है, आपके कपड़े साफ करती है, आपको स्कूल भेजती है, आपको यीशु के बारे में बताती है, तो उस बूढ़ी माँ को अपनी पूरी ताकत से इज्जत दीजिए। आपको उस माँ को आदर सम्मान देना ही चाहिए, क्योंकि श्रीमान वो सच्ची माँ है। लोग कंटकी के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के अनपढ़ होने की बातें करते हैं। आप यहाँ के लोगों को देखिए कि वे कितने अनपढ़ हैं। वहाँ की कुछ बूढ़ी माताएं यहाँ हॉलीवुड में आकर यहाँ की आधुनिक माताओं को बच्चे पालना सिखा सकती हैं। आप उन बूढ़ी माताओं के बच्चों को बाल बिखराए, होठ रंगे, क्या कहते हैं उसे, और अपने चेहरे को पोते हुए, जिसके कपड़े एक और को खिसक गए हों और पूरी रात घर से बाहर शराब पीता रहा हो, उसे घर में पहुंचने दे बस। भाई, उनकी माँ उसे देखकर तुरंत एक पेड़ की संपी तोड़ेगी और फिर जो होगा उसके बाद वह लड़की दोबारा घर से बाहर कभी जाने की नहीं सोचेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी माँ ऐसा ही करेगी। और अगर आपको ऐसी माताएं थोड़ी और यहाँ हॉलीवुड में मिल जाए तो ये बेहतर हॉलीवुड और ये बेहतर देश बन जाएगा। ये ठीक और सच बात है। केवल आधुनिक बनने की कोशिश करो, ये कहना शैतान की ही एक चाल है। हाँ, तो जब मैंने उस छोटी सी लड़की को सिगरेट पीते देखा तो मेरा हृदय रो उठा। मैंने सोचा, बेचारी लड़की। और उसने मुझसे पूछा, बिली, क्या तुमको सिगरेट चाहिए? मैंने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं धूम्रपान नहीं करता। उसने पूछा, तुम कह रहे थे कि तुमने नृत्य में भी भाग नहीं लिया था? वे लोग डांस में भाग लेने जाना चाहते थे, मगर मैं नहीं चाहता था। उन्होंने बताया था कि वहाँ साइकागोर गार्डन्स में नृत्य का कार्यक्रम होता है। और मैंने कहा कि नहीं, मैं नृत्य नहीं करता। उस लड़की ने पूछा, आप देखो, तुम नाचते नहीं, धूम्रपान नहीं करते, शराब नहीं पीते, तो फिर जीवन का मजा कैसे लेते हो? मैंने जवाब दिया, भाई, मैं शिकार खेलता हूँ, शिकार खेलना और मछली पकड़ने का मैं शौकीन हूँ। उसको इनमें कोई रुचि नहीं थी। और उसने कहा, लो, सिगरेट पियो। और मैंने कहा, नहीं मैडम, धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। और उस वक्त मैं कार के पीछे के बोर्ड पर खड़ा था। पुरानी फोर्ड कार मॉडलों में ऐसा होता था, आपको याद होगा। और मैं और वो लड़की पीछे की तरफ बैठे थे, मैं बोर्ड पर खड़ा था। उसने फिर पूछा कि तुम्हारा मतलब तुम सिगरेट नहीं पियोगे? उसने कहा, मतलब ये हुआ कि हम लड़कियों की हिम्मत तुम लड़कों से ज्यादा है। और मैंने कहा, नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं समझता, मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। उसने कहा, तुम क्या पियोगे, तुम बड़े कायर हो। हे प्रभु, मैं तो स्वयं को बड़ा होशियार साबित करना चाह रहा था, कायर नहीं। मैं तो लड़कर विजयी बनना चाहता था, जिसे पुरस्कार दिया जाता है। मेरे जीवन का यही उसूल रहा था। अतः मैंने कहा, मुझे कायर कहा, कायर कहा। मैं वो बात बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, लाओ सिगरेट दो। मैंने अपना हाथ सिगरेट लेने को बढ़ाया और सोचा, बता दूंगा कि मैं बुद्धू हूँ या नहीं। मैंने सिगरेट ली और माचिस की तीली जलानी चाहिए। अब आप जो भी चाहे सोचें, मेरा उत्तरदायित्व तो यही है कि आपको सच बात बताऊं। जब मैं सिगरेट सुलगाने को हुआ और धूम्रपान करने का पक्का इरादा लिए सिगरेट उसी प्रकार थामे था जितना दृढ़ निश्चय से आज ये पवित्र शास्त्र पकड़े हूँ, तभी मुझे वैसी की आवाज आती सुनाई दी। मैंने दोबारा कोशिश करी मगर उसे मुंह से ना लगा सका और मैं रोने लगा और सिगरेट को तोड़ के फेंक दिया। वे लोग मुझ पर हंसने लगे और मैं घर की ओर खेतों के रास्ते लौट चला। बीच में ही खेतों में बैठ कर रोने लगा। मेरा जीवन बड़ी विकट स्थिति में से गुजर रहा था। मुझे याद है पापा जी कुछ लड़कों के साथ एक दिन नदी पर पहुंचे। मैं और मेरा भाई साथ थे। हमें एक नौका लेकर नदी में घूमकर खाली बोतलें जमा करनी थी ताकि उनमें विस्की भरी जा सके और हमें एक दर्जन बोतलें जो नदी से खोजकर हम जमा करते उन पर हमें एक निकल मिलता था। और पापा जी साथ थे और उनके पास चपटी सी बोतल थी जो कि शराब का अद्धा था और वहाँ एक जला हुआ पेड़ पड़ा था और उस पर पापा जी और उनके साथ एक सज्जन श्री डॉन बुश बैठे थे और इन सज्जन के पास एक नाव थी जो बहुत बढ़िया थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस नाव का उपयोग करूं और वो मुझे नाव दे दें। उनकी नाव में बहुत बढ़िया पतवार थी जबकि मेरी नाव में पतवार थी ही नहीं। हमारी नाव में पुरानी चाल के तख्ते थे जिन्हें पैर से चलाना था। मैं चाहता था कि वो नाव चलाने के लिए मुझे मिल जाए। वे सज्जन वेल्डिंग का काम करते थे और पापा के लिए भुक्तियाँ तैयार करते थे। वे दोनों उस पेड़ के ऊपर अपने पांव पसार कर बैठ गए। तभी पापा ने पैंट की पिछली जेब से विस्की की वही चपटी बोतल निकाली। उन्होंने उसे डॉन बुश को दिया। उन्होंने घूंट भरा फिर वापस डैडी को दी और उन्होंने भी उसमें से घूंट भरा। उन्होंने उस बोतल को पेड़ में निकले ठूंठ के साथ टिका कर रख दिया। श्री डॉन बुश ने उस बोतल को उठाकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, बिली ये तुम लो। मैंने कहा, धन्यवाद मैं शराब नहीं पीता। और उन्होंने कहा, एक ब्रैनम और शराब नहीं पीता? सभी लोग हमारे परिवार में चलते फिरते ही मरे थे। उन्होंने पूछा, एक ब्रैनम होकर शराब नहीं पीते? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। मेरे डैडी बोले, ये नहीं, मैंने एक कायर उत्पन्न किया है। मेरे पापा मुझे कायर कह रहे। मैंने कहा, मुझे वो बोतल दो। और मैंने उसका ढक्कन खोला और उसे पीने का इरादा किया और जब मैंने उसे मुंह में उड़ेला तो फिर वही। मैंने बोतल वापस कर दी और मैदान की ओर अपनी शक्ति भर चिल्लाता हुआ भाग लिया। कोई मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा था। देखिए उस समय मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था क्योंकि मैंने शराब पीने की सोच ली थी मगर ये परमेश्वर का अनुग्रह था, अद्भुत अनुग्रह था जो मुझे वो सब बुरे काम करने से रोक रहा था। मैं खुद तो वो सब करना ही चाहता था मगर उसका अनुग्रह मुझे वैसा नहीं करने दे रहा था। बाद में मुझे एक लड़की और मिली जब मैं लगभग 22 वर्ष का था। वह बहुत प्यारी थी। वह एक जर्मन लूथरन गिरजे में प्रार्थना करने जाती थी। उसका नाम ब्रॉमबैक था जो कि ब्रॉमबॉक से मिलता जुलता नाम था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वह ना तो धूम्रपान करती ना शराब पीती ना नृत्य और ना किसी और बुरी चीज की शौकीन थी। वो भली लड़की थी। मैं कुछ समय उसके साथ घूमा फिरा था और उस समय मैं 22 वर्ष का था। मैंने तब तक कुछ पैसे जमा कर लिए थे और एक पुरानी फोर्ड कार खरीद दी थी। हम एक साथ कार्यक्रम बनाकर जाया करते थे और उन दिनों लूथरन चर्च हार्वर्ड पार्क से वहाँ आकर नया नया खुला था और उसमें जाने की किसी को मना ही नहीं थी। वहाँ एक डॉक्टर राइट डेविस नाम के सेवक थे जिन्होंने मुझे मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में नियुक्त किया था। सिस्टर अफशा ने भाई अफशा को मुझसे बात करने भेजा था, वरन डॉक्टर राइट डेविस से मेरे बारे में बात करने भेजा था। भाई डेविस फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में प्रचारक थे। मुझे ध्यान नहीं है कि वो फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च या शायद मिशन बैप्टिस्ट चर्च कहलाता था जो उन दिनों जेफरसन विले में था। उन दिनों वही भाई वहाँ प्रचारक थे और हम दोनों, मैं और वो लड़की, दोनों गिरजे जाया करते और रात को वापस साथ ही लौटा करते थे। मैंने कभी उस गिरजे की सदस्यता नहीं ली मगर उस लड़की के साथ वहाँ जाना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे मन में खास विचार यही था कि उसके साथ मैं वहाँ जा रहा था। मुझे सब बातें बताते हुए पूरी ईमानदारी बरतनी है। अतः मैं और वह साथ साथ जाते रहे और एक दिन मैंने सोचा कि वह एक अच्छे खाते पीते परिवार की लड़की है। मैं सोचता रहा कि मुझे उस लड़की का समय खराब नहीं करना चाहिए। यह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, आप समझ गए ना, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, भली लड़की है और मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो चुका था और मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं उस जैसी लड़की के जीवन यापन का साधन जुटा सकूं जिसके पास बढ़िया सा घर था, कालीन कमरों में बिछे थे। मुझे याद है पहली बार जब मैंने कालीन देखा तो मैं नहीं समझ पाया था कि ये क्या है। मैंने सोचा था कि ये कितनी सुंदरतम चीज है जो मैंने जीवन में पहले पहल देखी है, और मैं उस कालीन के किनारे किनारे चलकर उसे देख रहा था। मैं सोच रहा था कि इतनी बढ़िया चीज को उन्होंने फर्श पर क्यों डाल रखा है। वो पहला कालीन था जो मैंने देखा था। मैं सोचता हूँ वो कोई शायद उसे चटाई या कालीन कहते हैं, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ। वो पतली पतली पलीतों को बांध कर पिरो कर बनाया गया था और वो फर्श पर बिछाया जाता है, और वो सुंदर सुंदर लाल और हरे रंगों से बना था और बीच में बड़े बड़े गुलाब बने थे। देखिए कि वो अति सुंदर चीज था। अतः मुझे याद है कि मैंने ये सोच लिया था कि या तो मैं उससे पूछ लूंगा कि वो मुझसे विवाह करे, वरना मैं रास्ते से ही हट जाऊंगा ताकि कोई और अच्छा आदमी उससे विवाह कर सके, ऐसा कोई जो उसके प्रति दयालु और भला रहे तथा उसका जीवन यापन भली प्रकार कर सके। मैं तो उसके प्रति दयावान तो रह सकता था, मगर मुझे तो बस 20 सेंट प्रति घंटा मिलते थे, अतः मैं उसका पूरा खर्चा नहीं उठा सकता था, और फिर बाकी परिवार का खर्च भी चुका जिनकी देखभाल करनी थी। पापा का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था और मुझे पूरे परिवार की देखभाल करनी थी, अतः उन दिनों मेरे बुरे दिन चल रहे थे। अतः मैंने सोचा कि मेरे लिए बस यही एक अच्छी बात होगी कि मैं उससे कह दूं कि मैं अब उससे नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी आशाएं बांधकर एक तरह से उसके जीवन के साथ खेल सा किया और उसे मूर्ख सा बनाया था। और मैंने ये भी सोचा कि अच्छा होगा अगर कोई और उसे अपना कर विवाह करके उसके साथ घर बसा ले, और भले ही चाहे मैं उसे ना पा सकूं, मगर ये तो देख ही पाऊंगा कि वो सुखी है। और मैं ऐसा ही सोचता रहा, मगर मन से उसे निकाल ना पाया और मैं एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में उलझ गया था, और दिन प्रतिदिन मैं इन्हीं विचारों में डूबा रहा। मैं उससे ये पूछने में शर्म अनुभव कर रहा था कि क्या वो मुझे अपनाने को तैयार है। प्रत्येक रात मैं यही फैसला करता कि मैं अब उससे पूछूंगा, और हर बार मैं पूछ नहीं पाता था। वैसे ही था जैसे तितली पकड़ने को हाथ बढ़ाओ और हाथ में वो ना आए। आप सभी को तितली पकड़ने में ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। मैं उससे पूछना चाहता और उस समय अजीब हो जाता था, मेरा चेहरा लाल हो जाता था और मैं पूछ नहीं पाता था। अतः आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि मेरे जैसे आदमी का विवाह आखिर किस प्रकार से तय हो पाया होगा। आपको पता है क्या हुआ? मैंने पत्र लिखकर उससे इस बारे में पूछा, और आप जानिए कि वह पत्र केवल डियर मिस करके लिखा गया पत्र मात्र ही नहीं था, वरन मेरे प्रेम से ओत प्रोत पत्र था। वो केवल विवाह मात्र का अनुबंध पत्र नहीं था, वरन वो सब कुछ था जो मैं अपनी सामर्थ्य भर अच्छे से अच्छा लिख सकता था। और मैं थोड़ा सा उसकी माँ से डर रहा था। उसकी माँ थोड़ी रूखी सी थी, लेकिन उसके पिता एक भले अच्छे सज्जन थे, एक भले डच वासी वृद्ध व्यक्ति थे। वो किसी रेल यातायात कंपनी में बंधुत्व व रेल कर्मी संस्था के संयोजक थे, और वह उन दिनों में भी लगभग $500 प्रतिमाह कमाते थे, और मैं केवल 20 सेंट प्रति घंटे कमाने वाला उनकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक था। मुझे पता था कि मामला बनेगा नहीं, और उसकी माँ रूखे से स्वभाव वाली, अब देखिए कि वो वैसे बहुत बड़ी महिला है, हाँ वो उच्च वर्ग में उठने बैठने वाली सुसंस्कृत महिला थी, आप समझ गए। तो आप समझ लीजिए कि उनको मुझसे कोई खास मतलब नहीं था। मैं तो सीधा साधा देहाती नवयुवक था। वो सोचती थी कि होप को अच्छे सुसंस्कृत वर्ग के लड़के के साथ ब्याहना है, और मैं सोचता हूँ कि उनका सोचना उचित था, लेकिन ये बात मैं उन दिनों नहीं सोच पाया था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, और उसके पिता से पूछ नहीं सकता था, और मुझे पता था कि उसकी माँ से पूछने का मेरा इरादा नहीं था, और इसीलिए उससे ही सबसे पहले बात करनी थी। इस कारण मैंने अपनी बात खत में लिखी। फिर उस सुबह काम पर जाते समय मैंने उसे डाक में छोड़ दिया। हमें बुधवार की रात गिरजे जाना था, और ये बात सोमवार सुबह की थी। मैंने पिछले दिन रविवार को सारे दिन उसे ये बताना चाहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर ये कहने के लिए काफी साहस नहीं जुटा पाया था। अतः मैंने उस पत्र को डाक में छोड़ दिया। उस दिन काम करते समय मैं यही सोचता रहा कि अगर ये पत्र उसकी माँ के हाथ पड़ गया तो क्या होगा। हे प्रभु, मुझे पता था कि अगर ये उसकी माँ के हाथों में पड़ गया तो बस मैं गया काम से, क्योंकि वो मेरी ज्यादा परवाह करने वाली नहीं थी। और ये सोच सोच कर मैं पसीने पसीने होता रहा। और भाई, उस बुधवार की रात जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा मैं वहाँ उसके घर कैसे जाऊँ। अगर पत्र उसकी माँ को मिल गया होगा तो मेरा काम तमाम कर देगी। मैं उम्मीद करने लगा कि उसे ही पत्र मिला होगा। मैंने वो पत्र होप को लिखा था, पते पर उसका नाम यानी होप लिखा था। उसका नाम होप था, सो मैंने बस वही नाम लिफाफे पर लिखा था। और फिर विचार उठा कि शायद पत्र उसके हाथ तक न पहुँचाओ। ओफो, तो मुझे यही बेहतर लगा कि घर के बाहर ठहरा रहकर गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे बाहर बुलाऊं। मगर ऐसा लड़का जिसमें घर तक जाकर दरवाजा खटखटाने और किसी लड़की को बुलाने का साहस न हो, तो उसके साथ किसी लड़की के बाहर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। ये ठीक बात है। बड़ी घटिया और मूर्खतापूर्ण बात थी। अतः आप देखिए कि मैंने अपनी उस पुरानी फोर्ड कार को, जिसे मैं खूब चमका कर लाया था, उसके घर के बाहर रोक दिया और उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। प्रभु दया करे, उसकी माँ दरवाजे पर आई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें संभाल पाया। मैंने झिझकते हुए पूछा, आप श्रीमती ब्रह्मा कैसी हैं आप? उन्होंने पूछा, विलियम तुम कैसे हो? मैंने सोचा, ओ मुझे विलियम कहकर पुकारा। और उन्होंने कहा, क्या आप अंदर तशरीफ लाएंगे? मैंने कहा, धन्यवाद। मैं दरवाजे में दाखिल हुआ और मैंने पूछा, क्या होप तैयार है? और तभी होप तैयार होकर घर में से बाहर आई। वो मात्र 16 वर्ष की लड़की थी और उसने मुझसे कहा, हेलो बिली। और मैंने भी जवाब में कहा, हेलो होप। मैंने पूछा, क्या तुम गिरजे जाने के लिए तैयार हो? उसने कहा, बस एक मिनट। मैंने सोचा कि उसकी माँ को अभी तक पत्र नहीं मिला है। चलो अच्छा हुआ। होप को भी वो खत नहीं मिला है, तो ये भी बढ़िया रहा, क्योंकि पत्र मिला होता तो वो माँ को मेरा नाम बता चुकी होती। अतः मुझे बड़ी तसल्ली हुई। और जब मैं गिरजे से बाहर आया तो देखिए, फिर सोचने लगा, क्या पता उसे खत मिल ही गया हो, आप समझ गए। और पूरी चर्च सर्विस में मैं डॉक्टर डेविस क्या कह रहे थे सुनी नहीं पाया। मैंने उसकी ओर देखा और सोचा कि हो सकता है उसे पत्र मिल चुका हो और वो खामोश हो और चर्च के बाद पूछे कि मैंने उससे ऐसी बात क्यों पूछी। मैं कुछ नहीं सुन पाया कि भाई डेविस क्या कह रहे थे। मैं उसकी ओर देखता और कभी सोचता कि मैं उसे यूं ही नहीं खो सकता, मगर निर्णायक क्षण तो आने जरूर थे। अतः गिरजे के बाद हम सड़क से होते हुए घर की ओर चल दिए और चलते हुए अपनी फोर्ड कार तक पहुंच गए। और चांद तेज चमक रहा था और मैंने उसकी ओर देखा, वो अति प्रिय सुंदर दिखाई दे रही थी। भाई मैं उसकी ओर देखता और सोचता कि मैं किस कदर उसे पाना चाहता था, मगर मेरा अंदाजा था कि मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। हम थोड़ी दूर और पैदल चले और मैंने उसे एक बार फिर से देखा। मैंने पूछा, आज रात तुमको कैसा लग रहा है? उसने कहा, ओह मैं ठीक हूँ। हमने अपनी पुरानी फोर्ड कार उसके घर से नीचे ही रोक दी और उतरकर कोने के किनारे किनारे ऊपर उसके घर की ओर चले। मैं उसके साथ साथ उसके घर के द्वार तक पहुंच गया। मैंने सोचा था कि शायद उसे पत्र अभी तक नहीं मिला है और मुझे भी पत्र की बात भूल जानी चाहिए। जैसे भी हो, एक और सप्ताह मुझे मिल जाएगा, मेहरबानी हुई है। अतः मैं अंदर से अच्छा अच्छा अनुभव करने लगा था। उसने पूछा, बिली? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है। मैंने पूछा, मिला है? उसने कहा, भाई वो तो चलती रही और आगे एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने मन में सोचा, आए औरत कुछ तो कहे, या तो मुझे भगा दे या कहे कि इस बारे में उसका क्या विचार है। और मैंने उससे पूछा, क्या तुमने उसे पढ़ा है? उसने कहा, आप देखिए कि औरत किस प्रकार से आपको रहस्य में रख सकती है। ओ, मेरा मतलब ये नहीं है जो मैंने अभी कहा है, मगर आप देखिए ना, आप समझे। मैंने सोचा, तुम कुछ तो कहो, कुछ तो सही। मैं भी चलता रहा। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे पूरा पढ़ा है? और उसने अतः हम तकरीबन उसके घर के द्वार तक पहुंच चुके थे और मैंने सोचा, बेटे पोस्ट तक मत जाना, क्योंकि तुम उससे निमट नहीं पाओगे। बेहतर होगा कि अभी वह यहीं कुछ कहे। अतः मैं बस उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। और उसने कहा, बिली वैसा करके मुझे खुशी होगी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। परमेश्वर उसकी आत्मा को आशीष दे, वो आज प्रभु के पास उसकी महिमा में है। उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। उसने कहा, मैं सोचती हूँ कि इस बारे में हमें अपने माता पिता को बताना चाहिए, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? और मैंने कहा, प्रिय सुनो, इस काम को हम आधा आधा बांट लें। मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ से बात करो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगा। मैंने इस मामले के सबसे मुश्किल काम को उसे करने को कह दिया। उसने कहा, ठीक है, मंजूर है, मगर पहले तुम पापा से बात करना। मैंने कहा, ठीक है, मैं रविवार की रात उनसे बात करूंगा। और रविवार की रात आई, मैं गिरजे से उसे वापस घर लेकर आया और वो मेरी ओर देखती रही। और मैंने देखा कि 9:30 बज चुके थे और अब समय आ गया था कि मैं अपना काम शुरू करूं। और उस समय उसके पापा चार्ली अपनी मेज पर टाइप कर रहे थे और श्रीमती ब्रुम्बाक एक कोने में बैठी क्रोशिया से कुछ बुन रही थी। आप समझते हैं कि वो फंदे डालकर जैसे जाली बनाते हैं, मुझे नहीं पता आप उसे क्या कहते हैं। वो वहाँ बैठी कुछ इसी तरह का काम कर रही थी। होप मुझे देख रही थी और उसने अपनी भौंहें चढ़ाकर पिता की ओर इशारा किया कि मैं उनसे बात करूं। और मैं सोचने लगा, या खुदा क्या होगा अगर उन्होंने ना कर दी। अतः मैं बाहर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं सोच रहा था कि अच्छा होगा मैं ऐसे ही चला जाऊं। तो मैं दरवाजे की ओर चला और वो भी मेरे साथ दरवाजे तक आ गई। वो हमेशा द्वार तक आया करती थी और मुझे गुड नाइट कहती थी। और जब मैं द्वार पर पहुंचा तो उसने पूछा, क्या तुम उनसे बात नहीं करोगे? और मैंने कहा, हाँ मैं बात करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर नहीं जानता कि बात कैसे करूँ। और उसने कहा कि मैं वापस जा रही हूँ अंदर, आप उन्हें बुला लीजिए। अतः वह मुझे वहाँ खड़ा छोड़कर वापस अंदर चली गई। मैंने पुकारा, चार्ली? वो घूमने और पूछा, हाँ बिल, क्या बात है? मैंने पूछा, क्या मैं आपसे एक पल बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। वो घूमकर अपनी मेज से उठे। तभी श्रीमती ब्रह्मबाथ ने पहले उनकी ओर देखा, फिर होप की ओर, और फिर मेरी ओर देखा। मैंने पूछा, क्या आप बाहर पोर्च तक आइएगा? और उन्होंने कहा, हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। और वो बाहर पोर्च में आ गए। सुंदर रात है ना? उन्होंने कहा, हाँ है तो। मैंने कहा, काफी सुहावनी रात है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, वाकई है? मैंने कहा, आजकल मैं काम में बहुत सख्त मेहनत कर रहा हूँ। आप देखिए कि मेरे हाथ तक सख्त हो गए हैं। तुम उसे ले सकते हो? मैंने सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चार्ली, क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं? मैंने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आप पैसे वाले हैं और वह आपकी लड़की है। और उन्होंने पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो बिल, मानव जीवन में पैसा ही सभी कुछ नहीं होता। मैंने कहा, श्रीमान चार्ली, मैं केवल 20 सेंट प्रति घंटे कमाता हूँ, मगर मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, चाहे हाथों में ठीके पड़ जाएं, मैं उसे खिलाऊंगा। मैं जितना भी रह सकता हूँ उसके प्रति वफादार रहूंगा। उन्होंने कहा, बिल, मुझे इस बात का भरोसा है। उन्होंने कहा, बिल सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, खुशी के लिए धन का होना जरूरी नहीं है, बस उसके प्रति भले बने रहना, और मैं जानता हूँ कि तुम रहोगे। मैंने कहा, श्रीमान चार्ली धन्यवाद, मैं वास्तव में ऐसा ही करूंगा। और अभी उसकी बारी थी कि वो माँ से कैसे बात करती है। अब मुझे नहीं पता कि उसने कैसे क्या किया, मगर हमारी शादी हो गई। और जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास कुछ भी घरेलू सामान नहीं था। मैं सोचता हूँ हमारे पास $2 या $3 थे, और हमने एक घर किराए पर लिया जिसका किराया $4 प्रति माह था। ये एक पुराना 2 कमरों का मकान था। किसी ने हमें पुराना फोल्डिंग बेड दे दिया था। कौन जाने आपने कभी पुरानी चाल का वो फोल्डिंग बेड वैसा देखा है या नहीं। हमें वैसा ही एक बेड दिया गया था। और मैं सियर्स एंड रोबुक्स नामक दुकान से एक छोटी सी मेज और 4 कुर्सियां खरीद लाया था। उन पर उस समय रंग नहीं किया गया था, बाद में हमने खुद उन पर रंग किया था। और फिर मैं एक कबाड़ी श्री वेबर की दुकान पर गया और एक स्टोव खरीद लाया। मैंने उसके और उसकी जारी के लिए $1.75 खर्च किए। हमने अपनी गृहस्थी सजा ली। मुझे याद है कि मैंने रंग खरीद कर खुद उन कुर्सियों को रंगा था। और हम बहुत खुश, हम दोनों एक दूसरे के लिए वहाँ साथ थे, और यही काफी था। और परमेश्वर उसकी भलाई और उसकी दया से हम इस धरती पर सबसे अधिक सुखी दंपत्ति थे। मैंने ये पाया है कि खुशी इसमें नहीं है कि आपके पास दुनिया का धन और सामान कितना है, मगर इसमें है कि आपको जो मिला है या मिलना है उसमें आप कितने मगन और उसके लिए कितने संघर्षरत हैं। और कुछ समय के बाद परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार को मिली और हमें एक बेटा मिला। उसका नाम बिली पॉल है, जो यहाँ इस सभा में बैठा है। और उसके लगभग 11 महीने के बाद एक छोटी बेटी शारोन रोज के रूप में फिर आशीष मिली। उसका नाम वचन में से शोमरोन के गुलाब से लेकर ही हमने शारोन रोज रखा है। और मुझे याद है कि एक दिन कुछ छुट्टियां लेकर मैंने एक झील पर जाने का कार्यक्रम बनाया था। कुछ पैसे मैंने बचत करके रख लिए थे। कार्यक्रम पापा लेक पर जाकर मछली का शिकार खेलने का था। और जब मैं शिकार से वापस आ रहा था, और उस समय मैं अपने सेवकाई में प्रवेश करने की बात तो भूले ही जा रहा हूँ, डॉक्टर राय डेविस ने मुझे मिशन बैप्टिस्ट चर्च का सदस्य बनाया था और मुझे सेवक के पद पर नियुक्त किया था। और उस समय मैं जिस गिरजे में प्रचारक नियुक्त हुआ था, आज भी जेफरसन विले के उसी गिरजे में वचन प्रचार करता हूँ। उस छोटे से आराधनालय का मुझे चरवाहा बनाया गया था। मैंने 17 साल तक उस सेवकाई को किया और कभी एक पैसा भी लोगों से नहीं लिया। मैं चंदा मांगने पर विश्वास नहीं करता और उस गिरजे में दान पात्र तक नहीं रखा गया और काम करने के द्वारा आदि से जो दशमांश मिलता था उसे भवन के पीछे की ओर रखी एक डिब्बे में जमा करता था। उस पर लिखा था, जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया है वह मेरे साथ किया है, और उसी से गिरजे का खर्च आदि चलाया जाता था। हमारे ऊपर उस समय गिरजे का कर्जा था जो 10 वर्ष में चुकाना था और हमने उसे 2 वर्ष से भी कम समय में चुका दिया था और मैंने किसी भी तरह का कोई चंदा कभी नहीं लिया। और मेरे पास छुट्टियां बिताने के लिए कुछ डॉलर थे जो मैंने जमा किए थे। वह भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वो एक बहुत प्यारी लड़की थी और आज शायद उसकी कब्र बर्फ से ढकी हो, मगर मेरे हृदय में वो आज भी मौजूद है। मुझे याद है कि इस झील पर मछली का शिकार खेलने जाने के लिए उसने भी सख्त मेहनत करके मेरी सहायता करी। और जब मैं शिकार खेलकर झील से वापस लौट रहा था तो मिशवाक और साउथ बैंक इंडियाना की इलाकों में मैंने देखा, मैंने कारों के पीछे की ओर ये लिखा देखा, जीसस ओनली। और मैंने सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है, जीसस ओनली। और मैंने इस प्रकार के चिन्हों पर ध्यान देना शुरू किया और ये जीसस ओनली का चिन्ह बाइसिकल, फोर्ड, कैडिलॉक आदि किस प्रकार के वाहनों पर नहीं था, सब जगह यही चिन्ह था। मैंने उनमें से कुछ का पीछा किया और पाया कि वे लोग एक बड़े गिरजे में जमा हो रहे हैं और मुझे पता लगा कि वे लोग पेंतेकोस्तल हैं। मैंने पेंतेकोस्तल लोगों के बारे में सुन रखा था कि वे लोग कट्टर धार्मिकतावादी लोगों के झुंड हैं और वे जोश में फर्श पर लेटते हैं और मुंह से नाना प्रकार का शोर करते हैं। अतः मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं था। अतः उनके बारे में मैंने सारी बातें सुन रखी थी जो वो लोग अपने गिरजे में किया करते थे और मैंने सोचा कि मैं भी अंदर जाकर देखूंगा। और मैंने अपनी पुरानी फोर्ड कार रोक दी और वहाँ पर गाने बजाने का अपूर्व शोर सुनाई दिया जो जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे पता चला कि उन लोगों के 2 बड़े गिरजे थे, एक पीए ऑफ जेसी और दूसरा पीए ऑफ डब्ल्यू कहलाता था। आप में से बहुतों को उन पुराने नामधारी गिरजों की याद होगी। आज वे सब मिलकर एक बन गए हैं और यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च कहलाते हैं। मैंने उनके कुछ प्रचारकों को सुना। वे लोग वहाँ खड़े होकर यीशु के बारे में बता रहे थे कि वे कैसा महान है, उसकी बातें कैसी महान हैं, और वे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहे थे। मैंने सोचा ये क्या बात है जो वो कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ही कोई उछलने लगा और अन्य भाषा बोलने लगा। मैंने अपने जीवन में पहले ऐसा कभी कुछ ना सुना था। और फिर वहाँ बड़ी तेजी से कुछ महिलाएं भी भागती हुई आईं, इतनी तेज जितनी तेज वे दौड़ सकती थीं, और तब वो सभी लोग उठकर भागने दौड़ने लगे। और मैंने सोचा, भाई इन्हें तो गिरजे में उठने बैठने का तरीका भी पता नहीं। वे लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। मैंने सोचा ये कैसा है, कैसे लोगों का झुंड है। मगर आप देखिए कि जितनी अधिक देर तक मैं वहाँ बैठा रहा उतना ही अधिक मैंने वह सब पसंद किया। वहाँ वास्तव में कुछ ऐसा था जो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं उन्हें देखता रहा और वो सब जारी रहा। मैंने सोचा कि कुछ देर मैं ये सब और देखूंगा। मैं वैसे भी दरवाजे के पास बैठा हूँ, यदि कुछ और होता है और भगदड़ मचती है तो मैं दरवाजे से बाहर दौड़ जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी कार कहाँ खड़ी है, उधर कोने के पास है। और मैंने वहाँ प्रचारकों और पवित्र शास्त्र सीख रहे विद्यार्थियों और धार्मिक शिक्षाविदों की बातें सुनी। मैंने सोचा क्यों, ये सब तो अच्छा है। और जब शाम के खाने का समय हो गया और घोषणा करी गई कि सब लोग खाना खाने जाएं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास तो बस $1.75 ही बचे हैं और घर वापस पहुंचना है, और ये कार के पेट्रोल के लिए है, और वो पैसे इसलिए बचा रखे थे कि मैं घर पहुंच सकूं। मेरे पास पुरानी फोर्ड कार थी जो बड़ी प्यारी गाड़ी थी, वह बेवफा नहीं थी, ऐसी ही बढ़िया थी जैसी इस समय एक बाहर खड़ी है, बस उसकी हालत खराब थी। और मैं इस बात को मानता हूँ कि फोर्ड कार 1 घंटे में 30 मील जा सकती है, लेकिन वो रास्ता 15 मील जाना और 15 मील आना था, अतः कुल मिलाकर दोनों ओर से 30 मील बैठता था। तो मैंने सोचा कि बजाय वापस जाने के मैं रात वहीं बिताऊं और रात की उस होने वाली सभा में भाग लूं। और वहाँ उन्होंने घोषणा करी कि सभी प्रचारक जन जो किसी भी गिरजे से संबंधित हों वहाँ मंच पर आएं। और वहाँ लगभग 200 प्रचारक मंच पर आ गए, मैं भी मंच पर पहुँच गया। और उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है कि आप सभी ही यहाँ आकर के बोलें, तो आप बस एक एक करके आते जाएं और यही बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मेरी बारी आई और मैंने बताया, विलियम ब्रैनम, बैप्टिस्ट, जेफरसनविले, इंडियाना। और मैं मंच से नीचे आ गया। मैं सुन रहा था कि वे सभी खुद को पेंटिकोस्टल 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 बता रहे। कोई कह रहा था PFW, कोई PAJC और कोई PAWP आदि बता रहा था। मैं मन से नीचे आखिर सोचने लगा कि सबसे भद्दा बत्तख का बच्चा सरीका मैं हूँ। मैं बैठकर आगे होने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगा। और इस दिन वहाँ नौजवान प्रचारकों ने बहुत बढ़िया जोरदार वचन प्रचार किया और उन्होंने बताया कि आज रात का सुसमाचार उनके कोई बड़े प्रचार करेंगे। वे लोग अपने सेवक गणों को पादरी ना कहकर एल्डर शब्द से संबोधित कर रहे थे और वे लोग एक बूढ़े अश्वेत महाशय को मंच पर ले आए। पुरानी चाल का प्रचारकों वाला एक कोट पहने थे। मैं नहीं समझता कि आपने वैसा कोट देखा होगा। उसके कॉलर मखमल के थे और पीछे कबूतर की दुम की तरह पट्टी लटकी थी और उसके सिर पर बस सफेद बालों की एक पतली सी किनारी थी। वो बेचारा बूढ़ा सा मनुष्य मंच पर आया, इस प्रकार से खड़ा हुआ और उन्होंने चारों ओर घूमकर देखा। और वहाँ जबकि सभी प्रचारकों ने यीशु, उसकी महानता आदि के संबंध में वचन प्रचार किया था, इस वृद्ध सज्जन ने अय्यूब की पुस्तक में से यह अंश पढ़ा। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई व किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र एक साथ जय जयकार करते थे। और मैंने सोचा कि ये बूढ़ा इसे क्यों यहाँ लाए, क्यों नहीं किसी नवयुवक प्रचारक को बुलाया। वह भवन लोगों से ठसाठस भरा था। मैं सोच रहा था कि कोई नौजवान प्रचारक क्यों नहीं बुलाया गया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन वृद्ध सज्जन ने बजाय इसके कि आज धरती पर क्या हो रहा है, कैसी हालत है ये बताएं, उन्होंने सारे समय यही बताया कि ऊपर स्वर्ग पर क्या हो रहा है। और उन्होंने आदि में परमेश्वर की बाबत बताते हुए उसकी दूसरी आमद के समय उसकी हालत का जोरदार वर्णन किया। मैंने तो इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार पहले कभी नहीं सुना था। और तभी पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वो इतने ऊंचे उछला और उसकी पैरों की एड़ियां जोर से बज उठी। उसने अपने कांधों को पीछे की ओर झटका और मंच पर नीचे को झुक गया और उसने उन लोगों से कहा, तुम लोगों ने जो ये इतना सा मंच बनाया है, ये मेरे वचन प्रचार करने लायक काफी नहीं है। आप देखिए कि जितना स्थान इस समय यहाँ मंच पर है, उससे भी अधिक जगह वहाँ पर थी। मैंने सोचा कि जब पवित्र आत्मा के स्पर्श से वह बूढ़ा सज्जन इतनी उछल कूद मचा रहा है, तो मेरी स्थिति क्या होगी अगर वो मुझ पर उतर आए। मैंने सोचा कि मुझे भी इस प्रकार के अनुभव की जरूरत है। जब वो वृद्ध सज्जन मंच पर आए थे तो मुझे उन्हें देखकर अफसोस हुआ था कि वे कैसे क्या कर पाएंगे, मगर जब वो मंच से चले तो मुझे आत्मग्लानी अनुभव हुई कि मैंने वैसा क्यों सोचा। मैंने उन्हें मंच से वापस जाते हुए देखा। मैं रात बिताने के लिए चला और मैं सोच रहा था कि कल सुबह मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। अतः उस रात मुझे अपनी पैंट बिछाकर उसी पर सोना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर मैं अपने खाने के लिए स्वादहीन रोज खरीद कर ले आया और खेत में सोने को गया। एक रुपए में वो मुझे ढेर सारे मिल गए थे। वहाँ नीचे पानी का एक बम्बा था जिसमें से मैंने पानी पिया। मुझे पता था कि इससे कुछ देर का काम चल जाएगा और फिर बाद में मैंने वो रोज खाए और उन्हें खाकर फिर से पानी पी लिया। उसके बाद मैं खेत में गया और गाड़ी की दो सीटें वहाँ बिछा दी और अपनी पैंट उस पर बिछा कर लेट गया। और उस रात मैंने परमेश्वर से लगभग पूरी रात ही प्रार्थना करी। मैंने कहा, प्रभु ये सब क्या है जिसमें मैं फंस गया हूँ, मैंने इतने अधिक धार्मिक लोग जीवन में पहले कभी नहीं देखे हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इन सब बातों को समझ सकूं। और दूसरी सुबह मैं वहाँ पहुँच गया। उन्होंने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, मगर मैं उनके साथ नाश्ता नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास चंदे में डालने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था। मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए वापस चला गया और जब मैं फिर वहाँ पहुँचा तो जाकर वहाँ बैठ गया क्योंकि मैं अपने रात के बचे रोल्स नाश्ते के रूप में खाकर वापस आया था। वहाँ एक माइक्रोफोन था जिसमें वो लोग बोल रहे थे और मैंने पहले कभी माइक देखा नहीं था, अतः मैं उस यंत्र से डर रहा था। उसमें से दो डोरियाँ एक ऊपर को व एक नीचे को लटकी थी और वह लटकने वाले माइक की तरह से था। और वहाँ माइक पर किसी ने कहा, पिछली रात यहाँ मंच पर एक नौजवान बैप्टिस्ट प्रचारक आया था। मैंने सोचा कि अपना काम चलाने के योग्य मुझे समझा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वे मंच पर आने वाले प्रचारकों में सबसे कम आयु के थे, उनका नाम ब्रैनम है। क्या आप में से किसी को उनके बारे में कुछ मालूम है, कृपया उनसे कहिए कि वो आगे आए, हम चाहते हैं कि आज सुबह का सुसमाचार वो प्रचार करें। या खुदा, मैं तो केवल साधारण सी पैंट और टी शर्ट पहने हुए था, आप समझे। और आप जानिए कि हम बैप्टिस्ट लोगों का कहना था कि मंच पर वचन प्रचार करने वालों को सूट पहने होना चाहिए। एकदम चुपचाप खामोश बैठा रहा। वे लोग अपनी ये सभा अधिवेशन उत्तरी भाग में कर रहे थे और इसमें अन्य राज्यों के लोग भी थे, तभी वे अन्य लोगों को भी बोलने का अवसर दे पा रहे थे। अगर ये दक्षिण प्रांत में कहीं होती तो अश्वेत उसमें भाग नहीं ले सकते थे। वहाँ उस समय अश्वेत भी थे और मैं दक्षिण का निवासी था। मैंने सोचा कि शायद अभी तक मेरी कमीज के कॉलर में कलफ बाकी है और कॉलर खड़े हैं, तभी मुझे किसी अन्य से बेहतर समझा जा रहा है। उस सुबह यूं हुआ कि मेरे पास ही एक अश्वेत सज्जन बैठे थे। मैंने उनकी ओर देखा और सोचा कि ये भी मेरे मसीही भाई हैं। एक बार फिर घोषणा हुई, क्या कोई विलियम ब्रैनम के बारे में कुछ बता सकता है कि वो कहाँ है। मैं कुर्सी में इस तरह से नीचे को झुक गया। तब दोबारा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, बाहर के माइक का बटन दबाकर उन्होंने कहा, बाहर खड़े लोगों में से क्या कोई विलियम ब्रैनम नामक व्यक्ति के बारे में बता सकता है, उनसे कहिए कि सुबह की सभा में हम चाहते हैं कि वो वचन सुनाएं। वे दक्षिणी इंडियाना से आए एक बैप्टिस्ट प्रचारक हैं। मैं एकदम से चुप लगा गया और नीचे को झुककर बैठ गया। वैसे भी मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था। तभी मेरे पास बैठे उस अश्वेत लड़के ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मैंने सोचा कि अब या तो मुझे झूठ बोलना होगा या कुछ और करना होगा। मैंने कहा, जरा रुकिए। उसने कहा, जी। मैंने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं वही हूँ। उसने कहा, तो भाई आप ऊपर मंच पर जाइए। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकता। देखिए, मैं ये सफरी पैंट और टी शर्ट पहने हूँ और इस हालत में मैं वहाँ मंच पर नहीं जा सकता। उसने कहा, ये लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते आप क्या पहने हैं, आप ऊपर जाइए। मैंने कहा, नहीं नहीं आप चुप रहिए और आप कुछ मत कहिए। और एक मिनट बाद ही माइक पर फिर से पूछा गया, क्या विलियम ब्रैनम के बारे में कोई कुछ जानता है कि वो कहाँ है? तभी मेरे पास वाले महर्षि बोल पड़े, ये रहे वो। यह खुदा, अब क्या हो। और आप जानिए कि उस टी शर्ट को पहने हुए ही मैं वहाँ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, श्रीमान ब्रैनम आइए, यहाँ आइए, हम चाहते हैं कि आप सुसमाचार प्रचार करें। और मैंने सोचा, इन सारे प्रचारकों सारे लोगों के सामने मैं वचन प्रचार करूंगा। और मैं झिझकता हुआ मंच तक पहुंचा। मेरा चेहरा लाल और कानों में जलन सी होने लगी थी। मैं शिकार वाली पैंट और टी शर्ट पहने हुए था, एक बैप्टिस्ट प्रचारक। मैं उस माइक्रोफोन की तरफ बढ़ा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खड़ा होकर मैं बहुत घबराहट अनुभव कर रहा था और बड़ी भद्दी सी आवाज में मैंने कहा, मैं मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और मैंने लूका 16 बाब में से वह दृष्टांत निकाला और अपना विषय चुना कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और मैंने वचन प्रचार करना शुरू किया, वह तो करना ही था। और थोड़ी देर में ही घबराहट दूर हुई और मैं बेहतर अनुभव करने लगा। उस धनी मनुष्य ने अधोलोक में पीड़ा में पड़े अपनी आंखें उठाई। और इन्हीं छोटे छोटे तीन शब्दों पर मैंने वचन सुनाया, जैसा कि आपने मेरे अन्य सुसमाचारों को सुना है जो तीन शब्दों पर आधारित रहे हैं, जैसे बिलीवेस्ट दाउ दिस और स्पीक टू द रॉक। और उस समय मेरा विषय था, तब उसने पुकारा। और मैंने कहा कि वहाँ अधोलोक में उसके बच्चे नहीं थे तो वो चिल्लाया। वहाँ कोई फूल उद्धार नहीं थे तो वो चिल्लाया। वहाँ कोई परमेश्वर नहीं था तब वो चिल्लाया। वहाँ मसीह नहीं था तो वो चिल्लाया। और फिर मैं चिल्ला उठा और तब किसी अदृश्य सामर्थ्य से मैं भर गया, या खुदा। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और जब मैं एक प्रकार से अपने आप में आया तो भवन से बाहर खड़ा था। लोग बेतहाशा चीख चिल्ला रहे थे और हम सभी बड़ी अजीब से माहौल में थे। जब मैं बाहर आया तो एक सज्जन मेरे पास आए जो टेक्सास में पहने जाने वाला बड़ा सा हैट लगाए और बड़े बड़े जूते पहने थे। उन्होंने कहा कि मैं एल्डर हूँ, मेरा नाम ये है। प्रचारक थे वो, देहाती बूट या वेशभूषा में वो एक प्रचारक थे। तब मैंने उन्हें देखकर सोचा कि इस हिसाब से तो मेरी पैंट शर्ट बुरी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप टेक्सास में आए और वचन सुनाकर वहाँ बेदारी जगाएं। मैंने कहा, श्रीमान ठहरिए, मैं आपका प्रस्ताव नोट कर लेता हूँ। और मैंने उनका प्रस्ताव लिख लिया। एक और सज्जन आया जो गोल्फ खेलने की वेशभूषा में थे, आप जानिए कि जैसे गोल्फ में छोटी सी पैंट पहनते हैं। और उन्होंने कहा, मैं एल्डर हूँ और मियामी से आया हूँ, मेरा नाम वगैरह वगैरह है, मुझे आप अच्छे लगे। मैंने उन्हें देखकर सोचा, पहनावे से इन बातों का खास संबंध नहीं होता। उन्हें देखकर सोचा, ठीक है। अतः इन सब बातों के अनुभव सहित मैं घर लौट आया। पत्नी मुझसे मिली तो उसने पूछा, बिली क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने कहा, ओ मैं सर्वोत्तम मसीह लोगों से मिलकर आ रहा हूँ। तुम देखोगी कि वे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। वे लोग अपने धर्म से शर्माते नहीं हैं। और मैंने पत्नी को सारी बातों के बारे में बता दिया। और मैंने पत्नी से कहा, प्रिय देखो, उन्हीं लोगों की तरफ से निमंत्रणों की कतारें लग गई हैं, मुझे उन्होंने जगह जगह बुलाया है। उसने पूछा, वे लोग वैसे धार्मिक कट्टरवादी लोग तो नहीं है जिन्हें होली रोलर कहते हैं? मैंने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कैसे रोलर हैं, मगर उनके पास ऐसा कुछ जरूर है जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने कहा, एक बात के बारे में मैं आश्वस्त हूँ। मैंने देखा कि एक 90 वर्ष का बूढ़ा नौजवानों की तरह से उछलने लगा था। मैंने बताया कि इस तरह का वचन प्रचार मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना। मैंने किसी भी बैप्टिस्ट प्रचारक को वैसा प्रचार करते नहीं देखा। मैंने बताया कि वचन प्रचार करते करते वे इतने जोश में आ जाते हैं कि मानो उनकी सांसें रुक गई हों और घुटनों पर झुकते हुए फट से लग जाते हैं और फिर से उठकर अपनी अपनी सांसों को संभालते हैं। आप उनकी आवाज और जोशीले वचन प्रचार को 2 ब्लॉक दूर से सुन सकते हैं। मैंने बताया कि इस प्रकार का प्रचार मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना है। मैंने बताया कि वो लोग किसी दूसरी भाषा में बोलने लगते हैं, उनमें से कोई दूसरा उसका अर्थ बताता है कि क्या कहा जा रहा है। जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? उसने जवाब दिया, प्रिय जब मैंने तुमसे विवाह किया है तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मौत हमें जुदा ना करे। उसने कहा, अब हम इस बारे में घर वालों से बात करेंगे। और मैंने कहा, मैं अपनी माँ से बात करूंगा और तुम अपनी माँ को बताना। मैंने जाकर अपनी माँ को बता दिया। माँ ने कहा, क्यों नहीं बिली, प्रभु जो भी तुम्हें करने के लिए बुलाता है जाओ और वही करो। और श्रीमती ब्रह्मवाक ने मुझे बुलवा भेजा। मैं गया तो बोली, ये सब क्या है जो तुम कह रहे हो? और मैंने कहा, ओ श्रीमती ब्रह्मबॉक, आपने कभी भी इतने अच्छे लोग नहीं देखे होंगे। और उन्होंने कहा, चुपो, शांति रखो, रुको रुको। मैंने कहा, जी मामा जी, मुझे अफसोस है। और उन्होंने कहा, तुम उन होली रोलर्स पाखंडी पवित्र जनों के झुंड को, मंडली को पूरी तरह जानते हो क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं उन्हें पहले से नहीं जानता हूँ, मगर वास्तव में वो बहुत अच्छे लोग हैं। उसने कहा, ओह वही बात, तुम सोचते हो कि तुम मेरी बेटी को उन लोगों जैसी भीड़ में घसीट कर ले जा सकते हो? उन्होंने कहा, बेहुदा बात है, ये लोग और कुछ नहीं है मगर दूसरे गिरजों से बाहर खदेड़े गए कूड़ा करकट है। उन्होंने आगे कहा कि यकीनन तुम मेरी बेटी को बाहर उन जैसों के साथ नहीं ले जा सकते। और मैंने कहा, मगर श्रीमती ब्रह्मबॉक, आपको पता है कि मैं अपने हृदय में ये अनुभव कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे उन लोगों के साथ ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा, तुम जाकर अपने गिरजे को संभालो जब तक कि वे लोग तुम्हें अपने यहाँ पादरी के रहने योग्य मकान आदि न दें, और जब तक वे लोग ठीक ठाक लोगों की तरह से व्यवहार करना शुरू न करें। उन्होंने कहा, समझ लो तुम मेरी बेटी को इस तरह वहाँ नहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा, हाँ मामा। मैं घूमा और उनके घर से बाहर आ गया और होप रोने लगी। उसने बाहर आकर मुझसे कहा, बिली, माँ ने जो कुछ कहा है उसे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, परमेश्वर उसके अच्छे मन को आशीषित करे। मैंने कहा, ओ प्रिय, ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने उस बात को यूं ही जाने दिया। उसकी माँ अपनी बेटी को उन लोगों के बीच में नहीं जाने देगी जिन्हें वह कूड़ा करकट मान रही है। अतः मैंने भी उस बात को बस यूं ही रहने दिया। ये एक ऐसी भयंकर भूल थी जो मैंने जीवन में करी, भयंकर भूलों में से एक थी। कुछ समय बाद, बच्चे होने के कुछ वर्षों बाद की घटना है, और 1937 में बाढ़ आई थी और इन दिनों में गश्त पर था और भरसक कोशिश कर रहा था कि बेघर हुए मकानों के लोगों को बाढ़ से बचा लाऊं। तभी मेरी अपनी पत्नी सख्त बीमार पड़ गई, उसे निमोनिया हो गया था और उसे नगर से बाहर ले जाना पड़ा था। वे लोग उसे बाहर ले गए क्योंकि वहाँ अस्पताल पूरा भर गया था और वहाँ नहीं रखा जा सकता था, और हम उसे बाहर एक और सरकारी अस्पताल में ले गए जहाँ कमरा खाली था। उसके बाद मुझे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में वापस बुला लिया गया। मैं जीवन भर नदी के तट पर ही रहा था और अच्छा नाविक था, अतः पूरी कोशिश कर रहा था कि लोगों को बाढ़ से बचा सकूं। और उन लोगों ने मुझे बताया कि चेस्टनट स्ट्रीट पर एक मकान बह जाने की दशा में है और एक महिला और उसके कुछ बच्चे उसमें फंसे हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी मोटर बोट वहां तक जा सकती है तो तुम उन्हें बचा लाओ। मैंने कहा, मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। और मैं उन तूफानी धाराओं में चल दिया। वहाँ बांध टूट गया था और बांध का जल शहर को बाहर ले जाना चाहता था, और मैं अपनी सारी ताकत लगाकर और सारी कोशिशें करके जो मैं कर सकता था, अंत में उस स्थान के पास पहुँच गया। वह किला सा था और पानी उसमें से होकर बह रहा था, और मैंने एक महिला और उसके बच्चों की चीख पुकार सुनी जो वहीं पोर्च में पड़ी थी। उस भवन में बड़े बड़े गोल खंभे थे। मैं एक ओर से होता हुआ काफी दूर पहुंचा और फिर वहां से तेजी के साथ जलधारा में घुसा और उसे चीर कर उस पार किसी न किसी तरह पहुंच गया। और मैंने अपनी मोटरबोट ठीक उस जगह रोकी जहां उस भवन के द्वार या पोर्च का बड़ा खंभा था, ताकि उसके साथ अपनी नौका को बांध सकूं। मैंने दौड़कर शीघ्रता से उस माँ और उसके दो तीन बच्चों को नौका में चढ़ाया और अपनी मोटर बोट खोल कर वापस लौट पड़ा। मैं उन्हें लेकर शहर से 1.5 मील दूर नदी तट पर पहुंचा, और जब हम तट पर पहुंचे तो बेहोश हो गए और फिर चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसकी पुकार सुनकर मुझे लगा कि उसका बच्चा घर में ही रह गया है। उधर लोग उस महिला को संभालने लगे और मैं वापस उसके घर की ओर चल पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। वहाँ उसके साथ उसका 3 वर्ष का बच्चा तो बचा लिया गया था, मगर उसके कहने के ढंग से मैंने समझा कि शायद कोई और दूध पीता बच्चा पीछे छूट गया है। अतः मैं फिर से उसी जगह पहुंचा, और जब मैं घर के भीतर देख कर बाहर आया, कोई बच्चा नहीं था, तभी वो घर ढह गया। मैं बड़ी तेज से दौड़कर बाहर भागा और उस खंभे के टुकड़े को पकड़ लिया जिससे बंधी मेरी नौका जल में बहने लगी थी। मैं बोट में चढ़ गया और उसकी रस्सी खोल दी जो उस खंभे से बंधी थी, और तब पता चला कि तूफानी जल की मुख्य धारा में मेरी नौका आके फंस गई थी। उस समय रात के 11:30 बजे थे और बर्फ सहित वर्षा बहुत तेजी से बरस रही थी। मैंने बोट को चालू करने की डोरी को पकड़कर खींचा, मगर वो चालू नहीं हुई। मैंने फिर खींचा और फिर भी बोट का इंजन चालू नहीं हुआ। जल में दूर तक नौका बह चली गई और सामने ही अब जलप्रपात था जहां से जल बहुत नीचे गिर रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि बोट का इंजन चालू हो सके। मैंने सोचा, ये मेरा अंत आ पहुंचा है, या खुदा, बस यही अंत है। मैंने कहा, प्रभु मुझे इस प्रकार की मृत्यु से मत मरने दीजिए। और मैं वाकई पूरी कोशिश करके इंजन की डोरी खींचता रहा, मगर वो चालू नहीं हुआ। तभी मेरे मन में विचार कौंधा, मानो कोई कह रहा हो कि उस कूड़ा करकट वाले झुंड के बारे में क्या ख्याल है जिनके मध्य तूने जाना नहीं चाहा? मैंने फिर से अपना हाथ डोरी पर रखा और कहा, परमेश्वर मुझ पर करुणा कर, मुझे इस तरह से अपनी पत्नी और बच्चे से जुदा मत कर जो कि वहाँ उधर बीमार पड़े हैं। और मैं डोरी खींचता रहा, इंजन चालू नहीं हुआ चाहता था। और या प्रभु, मैं नीचे सामने पानी का गर्जन सुन रहा था और कुछ क्षणों में ही सभी कुछ खत्म होने वाला था। और मैंने कहा, प्रभु यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं उस बोट में ही घुटनों के बल प्रार्थना करने लगा और बर्फीली वर्षा की बौछारें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने कहा, प्रभु आप जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा। और मैंने फिर से इंजन की डोरी को खींचा और बोट चालू हो गई। जितना भी ईंधन था वो मैंने पूरा खोल दिया और अंत में किनारे पर पहुंच गया। और मैं उस गश्ती सरकारी ट्रक को खोजने लगा। वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि सरकारी कैंप अभी कुछ समय पहले बाढ़ की चपेट में आ गया था। मेरी पत्नी और दोनों बच्चे उसी में थे। इस समय शहर में चारों ओर लगभग 15 फीट गहरा पानी खड़ा था और मैं अपनी शक्ति भर उस सरकारी कैंप को खोजने लगा। वहाँ पर एक मेजर थे। मैंने उनसे पूछा, मेजर उस सरकारी कैंप अस्पताल का क्या हुआ? उन्होंने पूछा, चिंता मत करो, क्या तुम्हारा कोई उसमें था? मैंने कहा, हाँ, बीमार पत्नी और दो बच्चे थे। उन्होंने बताया कि वो सब बाहर जा चुके हैं। वे एक मालवाहक गाड़ी में चार्ल्स टाउन की ओर गए हैं। मैं दौड़ा और अपनी कार ली और अपनी बोट उसमें रख ली और चल पड़ा। थोड़ा चला तो पाया कि पानी के बहाव से लगभग 2-2.5 मील चौड़ाई में जमीन कट गई थी। पूरी रात मैं पार जाने की कोशिश करता रहा। कुछ लोगों ने बताया कि वो मालवाहक गाड़ी लकड़ी के बने ढांचे से फिसल कर बह गई थी। अंत में मैं एक पानी से घिरे टीले या टापू पर पहुंचा और 3 दिन तक वहीं मुझे रुकना पड़ा। मेरे पास ये सोचने के लिए काफी समय था कि वे लोग कूड़ा करकट थे या नहीं। मैं सोचता रहा कि मेरी पत्नी कहाँ होगी। कुछ दिनों के बाद जब मैं उस जगह से बाहर आया और उस पार पहुंचा तो मेरी पत्नी का पता चला। वे कोलंबस इंडियाना के बैप्टिस्ट ऑडिटोरियम में थी जिसे उन्होंने सरकारी अस्पताल की तरह बना लिया था। मैं वहाँ तेजी से पहुंचा और उसे उन कमरों में ढूंढने लगा। मैं होप 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 कहकर पुकारने लगा और मैंने देखा कि वहाँ एक चारपाई पर वो लेटी थी और उसे टीबी हो चुकी थी। उसने अपना हड्डियों का ढांचा मात्र हाथ उठाकर कहा, बिली। मैं दौड़कर उसके पास गया और पुकारा, प्रिय होप। उसने पूछा, मेरी हालत बहुत बदतर हो चुकी है ना? मैंने कहा, नहीं प्रिय, तुम ठीक दिखाई दे रही हो। लगभग 6 महीने तक हमने उसे बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, लेकिन उसकी दशा दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। एक दिन मैं अपनी गश्ती ड्यूटी पर था और गाड़ी का वायरलेस रेडियो सेट खुला था और मुझे रेडियो पर उनका संदेश सुनाई दिया, विलियम ब्रैनम के लिए सूचना, तुरंत अस्पताल पहुंचो, पत्नी मरने वाली है। मैंने फौरन गाड़ी की खतरे वाली लाल बत्ती जलाई, सायरन चालू किया और अस्पताल की ओर जितनी तेजी से चल सकता था चल दिया। अस्पताल पहुंचते ही मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। अस्पताल में घुसते ही मेरा एक साथी सैम अडेयर मिला, जिसके साथ मैं शिकार खेलता था और वो मेरा बचपन का साथी था। डॉक्टर सैम अडेयर वही व्यक्ति थे जिनके बारे में दर्शन दिखाई दिया था और अधिक दिन नहीं हुए जब उनके क्लिनिक के बारे में कहा गया था। और उन्होंने कहा था कि अगर किसी को दर्शन के संबंध में संदेह हो तो उन्हें बुलाकर विवरण प्राप्त कर समय देख ले कि वो सच है या नहीं। और वही डॉक्टर अडेयर इस समय अपना हैट हाथ में लिए इस प्रकार से मिले। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर वो रोने लगे। मैं उनकी ओर दौड़ा, आराम से लिपट गया और उन्होंने अपनी बाहों में मुझे लेते हुए कहा, बिली वो जा रही है। उन्होंने कहा, मुझे दुख है, मैंने सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था। मैंने विशेषज्ञ आदि को भी दिखाया था। मैंने कहा, सैम कहो वास्तव में वो हमसे जुदा होकर नहीं जा रही है? उन्होंने कहा, हाँ वो जा रही है। और उन्होंने कहा, बिल तुम अंदर मत जाओ। मैंने कहा, सैम मुझे जाना ही है अंदर। उन्होंने कहा, ऐसा मत करो, मत करो, कृपया मत करो। मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो। कहा, मैं भी तुम्हारे साथ भीतर चलूंगा। मैंने कहा, नहीं तुम बाहर ठहरो, उसके अंतिम क्षणों में मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, वो बेहोश है। मैं कमरे में दाखिल हुआ, नर्स वहाँ बैठी रो रही थी क्योंकि वह और होप सहपाठी रही थी। और मैंने कमरे में इधर उधर देखा, वो नर्स रोने लगी और एक और हाथ से इशारा किया और साथ साथ चल दी। मैंने होप को देखा और उसे झंझोड़ दिया। वही थी, 120 पाउंड वाली देह अब 60 पाउंड की जर्जर स्थिति में पड़ी थी। मैंने फिर उसे हिलाया और तब जो हुआ उसे मैं 100 वर्ष भी जीऊं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसने मेरी ओर पलटकर अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से मुझे देखा। वो मुस्कुरा दी और बोली, बिली तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? मैंने कहा प्रिय मुझे अब पैसे मिल गए हैं, मुझे काम करना पड़ा था, हम कर्जे में थे और सैकड़ों डॉलर का डॉक्टर का बिल था जिसे भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे काम करना पड़ा था। मैं दिन में दो तीन बार उससे मिलने आता था और रात को उसके पास रहता था जबकि उसकी दशा इतनी खराब चल रही थी। मैंने उससे पूछा वापस क्यों बुलाया इसे, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा बिल तुमने इसके बारे में प्रचार किया, बातें करी, मगर तुम नहीं जानते कि क्या है। मैंने पूछा तुम किसके बारे में कह रही हो? उसने कहा स्वर्ग के बारे में। उसने कहा देखो मुझे कुछ लोग स्त्री पुरुष या कुछ वैसे से सफेद वस्त्र पहने हुए मेरी सुरक्षा करते हुए मुझे मेरे स्वर्गीय घर में ले जा रहे थे और उसने बताया मैं बहुत आराम और शांति में थी, बड़ी बड़ी सुंदर चिड़ियाएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थीं। उसने कहा तुम ये मत सोचना कि मैं अपने आप में डूबी भ्रम में हूँ। उसने कहा बिली मैं तुमको हम दोनों ने जो करी है वो गलती बताने जा रही हूँ। उसने कहा बैठ जाओ। मैं नहीं बैठा और उसके पास घुटनों पर झुक गया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने पूछा क्या तुम जानते हो कि हमसे कहाँ गलती हुई? और मैंने कहा हाँ प्रिय मुझे मालूम है। तुम्हें मामा की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी, वे लोग ठीक राह पर थे। मैंने कहा मुझे मालूम है। उसने कहा मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों के साथ जाओगे क्योंकि वो ठीक हैं।
And she said, raise my children like that.
मेरे बच्चों को उनकी तरह से बनाना। और उसने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं मर रही हूँ मगर मैं भयभीत नहीं हूँ, वहाँ जाने से घबरा नहीं रही हूँ, वह अति सुंदर स्थान है। उसने कहा बस मुझे यही बुरा लग रहा है कि मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ बिल, मुझे मालूम है कि तुम्हें इन दोनों छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। उसने कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरे। उस 21 साल की माँ के लिए इस प्रकार से सोचना बड़ी समझदारी की बात थी। मैंने कहा होप मैं इस बात का वायदा नहीं कर सकता। उसने कहा कृपया वादा करो। उसने कहा एक बात और मैं तुमको बताना चाहती हूँ, क्या तुम्हें इस राइफल की बात याद है? बंदूकों का मैं दीवाना रहा हूँ। उस दिन तुम उस राइफल को खरीदना चाहते थे और तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं पैसे बचा कर जमा करती रही हूँ, निकल्स मैं जमा करने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हारे उस राइफल का मूल्य चुका सकूँ। उसने कहा जब ये सब मामला निबट जाए और तुम घर जाओ तो वहाँ फोल्डिंग बेड के नीचे कागज में वो रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। उसने कहा वादा करो तुम वो राइफल खरीदोगे। आप नहीं जानते कि निकल के रूप में उन 75 सेंट डॉलर को वहाँ रखे देखकर मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मैंने राइफल खरीद ली। उसने एक और बात कही तुम्हें क्या वो समय याद है जब हमें फोर्ट वेन जाना था और तुम मेरे लिए एक जोड़ी मोजे खरीदने बाजार गए थे? मैंने कहा हाँ याद है। मैं मछली का शिकार खेल कर लौटा था और हमें उस रात वचन प्रचार करने फोर्ट वेन जाना था। और उसने कहा तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि दो किस्म के मोजे मिलते हैं, एक किस्म को शिफॉन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, रियान, ठीक है ना, रियान और शिफॉन, उनमें से शिफॉन सबसे अच्छी किस्म के मोजे थे, क्या ये बात ठीक है? और उसने कहा था कि उसे पूरे साइज के शिफॉन मोजे चाहिए। आप जानते हैं कि पूरे साइज के मोजों में ऊपर की तरफ वह छोटा सा निशान लगा होता है और मुझे महिलाओं के कपड़े आदि खरीदने संबंधी कोई ज्ञान नहीं था और मैं सड़क पर यही बुदबुदाता रहा, शिफॉन शिफॉन शिफॉन, मैं याद करने की चेष्टा में कहे जा रहा था शिफॉन शिफॉन शिफॉन। किसी ने मार्ग में कहा हेलो बिली। मैंने कहा ओह हेलो 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 शिफॉन 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 शिफॉन। एक मोड़ पर मुझे श्री शिफॉन मिले। उन्होंने कहा, मैंने कहा वाकई क्या ये सच है? जब मैं उनसे बात करके आगे बढ़ा तो सोचने लगा वो क्या नाम था, मैं भूल गया था। अतः मैं टेंट सेंट स्टोर में थेल्मा फोर्ड नाम की एक लड़की काम करती थी जिसे मैं जानता था और मुझे पता था कि वे लोग महिलाओं के जुराब आदि बेचते हैं। अतः मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा हेलो थेल्मा। और उसने पूछा हेलो बिली आप कैसे हैं, होप कैसी है? और मैंने कहा सब ठीक है। मैंने कहा थेल्मा मुझे होप के लिए एक जोड़ी मोजे खरीदने हैं। उसने कहा होप तो मोजे नहीं पहनती। मैंने कहा मैडम हाँ पहनती है। उसने कहा आपका मतलब पूरे साइज के मोजे से है? मैंने कहा हाँ वास्तव में यही चाहिए। मैंने सोचा ओ मैंने अपनी अज्ञानता प्रकट कर दी है। और उसने पूछा किस किस्म के स्टॉकिंग्स आपको चाहिए? मैंने सोचा ओ आपके पास कैसे वाले हैं? उसने कहा हमारे पास रियान है। मुझे दोनों का अंतर पता नहीं था, रियान शिफॉन मुझे एक से लगते थे। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। मैंने कहा पूरे साइज का एक जोड़ा दे दो। मैं गलत कह गया, फुल स्टाइल नहीं, उसे फुल फैशन कहते हैं। میں نے کہا مجھے اس کا ایک جوڑا پیک کر دو. جب اس نے مجھے ایک جوڑا اسٹاکنگز دیے تو وہ کیول 20 یا 30 سینٹ کے تھے, تقریباً مجھے بتائے گئے مولی کی آدھی قیمت کے تھے. دیکھ کر میں نے کہا مجھے دو جوڑے دے دو. اور میں گھر واپس پہنچا اور بولا یہ دیکھو تم مہیلا لوگ سارے شہر کی دکانوں میں سودے بازی کرتی ہو اور سودے بازی میں تم لوگ کتنا کاؤں کاؤں کرتی ہو. مگر ادھر دیکھو جتنے میں تم ایک لاتی تھی میں دو جوڑے لے آیا ہوں. میں نے کہا یہ میری اپنی خاص خاصیت ہے. میں نے کہا تھیلما سے خرید کر لایا ہوں, ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے آدھی قیمت ہی لی ہو. اس نے پوچھا کیا تمہیں شیفون کے ملے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میڈم. میرے لیے تو ایک ہی بات تھی, مجھے دونوں میں کچھ فرق نہیں لگتا تھا. اور اس نے کہا بلی, مجھے تب بڑا تعجب ہوا جب پورٹ ویانے میں میں نے دیکھا کہ اسے ایک اور جوڑا موزے خریدنے پڑے تھے. اس نے کہا تھا میں نے وہ تمہاری ماں کو دے دیے ہیں, وہ بوڑھی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا مجھے افسوس ہے میں نے ایسا کیا. اور میں نے کہا پریے یہ سب ٹھیک ہے. اور ہوپ نے کہا اب دیکھو تم اکیلے مت رہنا. وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ گھنٹوں بعد ہی کیا گھٹت ہونے والا تھا. اور میں نے اس کے پیارے ہاتھوں کو تھام لیا تھا جب کہ پرمیشور کے دوت اسے لے کر چلے تھے. میں گھر واپس پہنچا اور نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کروں. رات کو جب میں وہاں لیٹا تھا تو میں نے کھٹر پٹر کی آواز سنی. پرانے کاغذاتوں میں ایک چوہا تھا جو شور کر رہا تھا, اور میں نے پیر سے دوار کو بھیڑ دیا اور دیکھا کہ اس کے پیچھے اس کا کرتا ٹنگا تھا اور وہ مردہ گھر میں لیٹی تھی. اور کچھ پلوں میں ہی مجھے کسی نے پکارا بلے. یہ بھائی فرینک بروئے تھے جنہوں نے کہا تمہاری بچی مر رہی ہے. میں نے کہا میری لڑکی؟ انہوں نے کہا ہاں شرون روز. ڈاکٹر وہاں اس کے پاس ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے ٹیوبرکولر میننجائٹس ہو گیا ہے اور یہ اسے اس کی ماں سے لگا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والی ہے. میں کار میں بیٹھ گیا اور وہاں پہنچا اور وہ پیاری سی چھوٹی سی چیز وہاں تھی. وہ اسے لے کر اسپتال کو دوڑے. میں اسے وہاں دیکھنے گیا. سیم نے مجھے روکتے ہوئے کہا بلی تم اس کے کمرے میں مت جاؤ, تمہیں بلی پال کے بارے میں سوچنا ہے. انہوں نے کہا وہ تو جا ہی رہی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر مجھے اپنی بچی کو دیکھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں تم بھیتر نہیں جا سکتے, اسے میننجائٹس ہے بلی, اور تمہارے دوارا وہ بلی پال کو لگ سکتی ہے. میں نے تب تک پرتیکشا کری جب تک ڈاکٹر سیم باہر نہیں آئے. اسے مرتے ہوئے دیکھنے کی مجھے منائی تھی اور اس کی ماں وہیں نچلے بھاگ میں مردہ گھر میں لیٹی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھسپیٹ کرنے کا کام بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. میں چپکے سے دوار میں گھسا اور جب سیم اور نرس باہر آئے تو میں بھوتل میں چپکے سے پہنچ گیا. یہ بڑا چھوٹا سا اسپتال تھا, ایک دم الگ جگہ پر اسے رکھا گیا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے پاس مکھیاں بھن بنا رہی تھیں. اس کی آنکھوں پر ایک چھوٹی سی مچھر والی جالی پڑی ہوئی تھی. شریر کے اینٹنے سے اس کی چھوٹی سی موٹی ٹانگیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں اور ہاتھ بھی ہل رہے تھے. اور میں نے اس کی اور دیکھا, وہ ماتر 8 ماہ کی بچی بڑی پیاری اور آکرشک تھی. جب میں کام سے گھر آتا تھا تو اس کی ماں اسے تکون کلوٹ پہنا کر باہر بٹھا دیا کرتی تھی. اور آپ دیکھیے کہ جب میں کار کا ہارن بجاتا تو میرے پاس آنے کے لیے گگ 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 کی آواز کرتی مچلنے لگتی تھی. اور وہی میری پیاری بچی وہاں پڑی مر رہی تھی. اور میں نے جھک کر اسے دیکھا اور کہا دیکھو شیری تم پاپا کو پہچانتی ہو؟ پاپا کو پہچانتی ہو شیری؟ جب اس نے دیکھا تو چھوٹی پیاری نیلی آنکھیں پلٹ گئیں, اتنی ادھک وہ بیمار تھی. اس کو دیکھ کر مانو میرا ہردے پھٹ کر باہر کو آ گیا تھا. میں گھٹنوں کے بل جھک گیا اور پرارتھنا کری پربھو مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, کیا میں نے سڑکوں کے کنارے پوتر سوسماچار پرچار نہیں کیا؟ جو کچھ میں جانتا تھا میں نے ویسا ہی سبھی کچھ کیا ہے. اس بات کا ذمہ دار مجھے مت بنا پربھو کہ میں نے ان لوگوں کو کبھی کوڑا کرکٹ, میں نے کبھی نہیں کہا انہیں کوڑا کرکٹ. یہ تو وہ مہیلا تھی جس نے ان لوگوں کو کوڑا کرکٹ کہا تھا. میں نے کہا مجھے دکھ ہے کہ یہ سب ہوا, مجھے کھما کر دے اور میری بچی کو مجھ سے نہ چھین. اور جب میں پرارتھنا کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ ایک کالا سا کوئی کپڑا یا چادر اوپر سے نیچے کو اتری ہے. تب میں جان گیا تھا کہ پرمیشور نے میری بنتی اسویکار کر دی ہے. دیکھیے کہ وہ سمے میرے جیون کا سب سے کٹھن اور دکھدائی سمے تھا. جب میں پرارتھنا کر کے کھڑا ہوا اور میں نے اسے دیکھا, شیطان نے میرے من میں یہ وچار ڈالے کیسے کیسے پریشرم سے تم نے وچن پرچار کیا اور کیسا اچھا جیون تم نے بتایا, اور جب تیرے اپنے بچے کی چنگائی کا سمے آیا تو اس نے تیری بات گرا دی. اور میں نے من میں کہا ہاں یہ سچ ہے, اگر وہ میرے بچے کو نہیں بچا سکتا تو میں نہیں. یہ سوچتے ہی میں سہسا رک گیا. میں بس سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں. और तब मैंने यूं कहा, प्रभु तूने मुझे उसे दिया था, तूने ही वापस ले लिया है, प्रभु का नाम धन्य हो। यदि तू मेरे प्राण भी ले ले तो भी मैं तुझे प्यार करूंगा। और मैंने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और कहा, मेरे हृदय के टुकड़े तुझे आशीष मिले, तेरा पिता तुझे अपने पूरे हृदय से पाल पोस कर बड़ा करना चाहता था, मैं तुझे बड़ा करके परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनाना चाहता था, मगर मेरे दिल के टुकड़े तुझे स्वर्गदूत लेने आ रहे हैं, तेरा डैडी तेरी छोटी सी देह को उठाकर तेरी माँ की बाहों में सौंप देगा, मैं तुझे तेरी माँ के पास ही दफन करूंगा और एक दिन तेरे डैडी तुझे जरूर मिलेंगे, तू अपनी माँ के साथ उसी जगह इंतजार करना। जब उसकी माँ मर रही थी तो उसने कहा था, उसके अंतिम शब्द थे, बिल अपने काम में लगे रहना, परमेश्वर का काम करते रहना। मैंने जवाब दिया था, जब प्रभु आए यदि उस समय मैं अपने काम में हुआ तो मैं बच्चों सहित तुमसे मिलूंगा, यदि यूं ना हुआ तो मुझे तुम्हारे पास दफन कर दिया जाएगा। और उस दिन तुम उस महान द्वार के सीधे हाथ की ओर जाना, और तुम जब उन सभी प्राचीन भाइयों को उधर से आते देखो तो जोर जोर से चिल्लाना, जितने जोर से चिल्ला सकती हो, बिल बिल बिल, मैं तुमको वहां मिलूंगा। मैंने अपनी उस बच्ची को प्यार किया और अलविदा कहा। आज मैं अपने काम की युद्ध भूमि पर तैनात हूँ। तब से अब तक लगभग 20 साल बीत चुके हैं। मेरा कार्यक्रम पत्नी से मिलने का तय है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, पर जब वो मर गई तो मैंने उस छोटी बच्ची को उठाया और उसकी माँ की बाहों में थमा दिया और हम उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाने ले गए। और मैं वहाँ खड़ा हुआ, मेथोडिस्ट प्रचारक भाई स्मिथ को दफनाने की रस्म पढ़ते हुए सुनता रहा। कह रहे थे कि राख में राख, अब माटी में माटी मिल जाएगी, हृदय हृदय में। और इस तरह वो चली गई। उसके बाद अधिक दिन नहीं बीते थे कि एक सुबह मैं बिली को लेकर वहाँ पहुँचा। उस समय बिली पॉल बहुत छोटा था। यही वजह है कि वो मुझसे और मैं उससे चिपके से रहते हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए बाप और माँ दोनों बनना पड़ा है। मुझे हर समय उसकी दूध की बोतल अपने साथ रखनी पड़ती थी, क्योंकि हमारा बूता नहीं था कि रात में उसका दूध गर्म करने के लिए ईंधन जलाएं। मैं उसकी बोतल को इस तरह अपनी कमर के नीचे रखकर सोता था ताकि मेरे शरीर की गर्मी से वो गर्म रहे। हम दोनों दो अंकुरों की तरह साथ साथ रहे हैं। और एक दिन जब मैं विश्राम पाऊंगा तो ये वचन उसे सौंप कर कहूंगा, बिली जाओ और सर्वदा वचन को थामे रहना। कुछ लोग आश्चर्य करते होंगे कि मैं हर समय उसे अपने साथ क्यों रखता हूँ, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आज वो शादीशुदा है, मगर उसकी माँ ने कहा था उसके साथ साथ रहना, और एक साथ निकली कलियों की तरह हम साथ साथ रहे हैं। मुझे याद है ये कहीं भी रोने लगेगा, ये जानकर उसकी बोतल उस समय भी मेरे हाथों में रहती थी जब मैं शहर में इधर उधर कहीं जाता था। एक रात वो मकान के बाहर पिछवाड़े में निकल गया, जब ये होने वाला था तो उसकी माँ स्वयं ही एक लड़की सी थी, वह परेशान होती थी, और मैं पिछवाड़े बलूत के पेड़ के नीचे टहलने लगता था। और उस दिन वो उसी तरह पिछवाड़े अपनी माँ के लिए रो रहा था, और मेरे पास उसे देने के लिए कोई माँ नहीं थी। उसे गोद में उठाकर मैंने कहा, ओ मेरे चांद। उसने पूछा, डैडी मेरी मामा कहाँ है, क्या आपने उन्हें वहाँ जमीन में रखा है? मैंने कहा, नहीं बेटे, वो ठीक है, वो स्वर्ग में है। और एक दोपहर उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मानो मेरे काटो तो खून नहीं। वो रो रहा था और रोते रोते शाम बीतने को थी, और मैं कभी उसे पीठ पर कभी कांधे पर बिठाकर थपकियां दे रहा था। और उसने कहा, डैडी कृपया जाइए और माँ को यहाँ ले आइए। और मैंने कहा, बेटे मेरे पुत्र, मैं तेरी मामा को नहीं ला सकता, उन्हें यीशु। और तभी वो बोला, यीशु से कहिए कि वो मेरी माँ को भेज दे, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे मेरी माँ चाहिए। और मैंने कहा, प्रिय बेटे, मैं और तुम एक समय आएगा जब उनसे मिलेंगे। और वो सहसा खामोश हो गया, फिर बोला, डैडी। मैंने कहा, हाँ, मैंने माँ को ऊपर वहाँ उस बादल में देखा है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा दम निकल गया हो। मैंने सोचा, या खुदा क्या कह रहा है, मैंने मामा को ऊपर बादलों पर देखा है। मैं लगभग बेहोश सा हो गया। मैंने उस छोटे से बिल्ली को सीने से लगाकर चूमा और सिर झुकाए खड़ा सा रह गया। दिन बीतते रहे, मैं उन्हें भूल नहीं पाया। मैंने काम में मन लगाना चाहा, घर वापस जाने को मन नहीं करता था। अब वो घर भी रह तो नहीं गया था, मैं फिर भी वहीं रहना चाह रहा था। हमारे पास टूटे फूटे फर्नीचर के सिवाय घर में कुछ नहीं था, मगर वो फिर भी बहुत था, क्योंकि वो और मैं साथ साथ उसी घर में आनंद पूर्वक रहे थे। मेरा घर वही था। और मुझे याद है, एक दिन मैं सार्वजनिक विभाग की विद्युत इकाई में अपने काम पर था और काम करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक जगह कुछ पुराने तार टूट गए थे, उन्हें लगाने के लिए बहुत सुबह मैं काम पर गया था, और मैं एक लोहे की कैंची पर चढ़ गया, और मैं मन से अपनी छोटी बच्ची की याद नहीं निकाल पा रहा था, और मुझे लगता कि मेरी पत्नी वो जा रही है, मगर वो बच्ची जाती हुई छोटी सी कोई चीज के रूप में दिखाई देती थी। मैं वहाँ ऊपर चढ़ा गा रहा था, वहाँ दूर पहाड़ी पर एक पुरानी जर्जर सलीब खड़ी है, और उसी समय बिजली ट्रांसफार्मर में आ गई और फिर उन्हीं तारों में आई जिन्हें मैं ठीक कर रहा था। मैं उस समय ऊपर टंगा था और मैंने देखा मेरे पीछे सूरज निकल आया था और तब सहसा दूर पहाड़ी की ओर मैंने सलीब को देखा और मेरे हाथ उस ओर फैल गए। मैंने सोचा हाँ मेरे पाप ही हैं जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया है। और मैंने कहा शारोन मेरी बच्ची तेरा डैडी तुझे देखना चाहता है, तुझे बुरी तरह याद करता है। मेरी प्यारी छोटी सी चीज, किस प्रकार मैं तुझे अपनी बाहों में लेने को तरस रहा हूँ। उसकी मौत को कई सप्ताह बीत चुके थे और इस समय मैं अपने ही विचारों में गुम हो गया था। मैंने अपने रबर के दास्ताने उतार लिए और उस समय 2300 वोल्ट का करंट तारों में ठीक मेरे सामने बह रहा था और मैंने अपने दास्ताने उतार लिए और कहा परमेश्वर इस प्रकार से आत्महत्या करना बुजदिली है, मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, मगर शेरी तेरे डैडी अब बस कुछ ही क्षणों में तुझसे तेरी मम्मी से मिलने आ रहे हैं। मैंने हाथों से रबर के दास्ताने उतारने के लिए उन्हें खींचा ताकि 2300 वोल्ट के उन तारों पर हाथ रख दूं। क्या होगा, वो फट जाएंगे, शरीर फूट जाएगा, आपके शरीर का सारा लहू जल जाएगा, एक बूंद भी नहीं बचेगी। और जब मैंने अपने दास्ताने उतारने चाहे तो कुछ ऐसा घटित हुआ और जब मैं अपने आपे में आया तो पाया मैं जमीन पर बैठा था और चेहरे पर इस प्रकार अपने हाथ रखे रो रहा था। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह था, वरना आज मैं इस प्रकार चंगाई सभा में भाग ना ले रहा होता, मुझे इस बात का विश्वास है। ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे नहीं वरन मेरे द्वारा दिए जाने वाली अपनी इस चंगाई के दान की रक्षा करी थी। मैं घर के लिए चला, मैंने अपने औजार रख दिए और लोगों से कहा मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं घर के पास पहुँचा और अपनी डाक उठा ली। मौसम कुछ ठंडा सा था, मैं घर में गया। हमारे घर में एक ही छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटी सी चारपाई पर मैं सोता था और वहाँ एक बड़ा एक वही स्टोव था। मेंढक घर में आ जाया करते थे। मैंने डाक देखनी शुरू करी और पहली चीज जो मैंने देखी वो उसके उन 80 सेंट का कागज था जिसे उसने क्रिसमस बचत के रूप में जमा किया था और उस पर लिखा था मिस शारोन रोज ब्रैनम। और फिर से उसकी स्मृति ताजा हो उठी थी। मैं शिकार संरक्षक रहा था, मैंने चमड़े की थैली से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने कहा प्रभु इस तरह और नहीं जी सकता, मुझे घोर कष्ट हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। मैंने बंदूक का खटका पीछे सरकाया और उसे सिर से लगाया और उस अंधेरे कमरे में खाट के पास घुटनों के बल छुप गया। मैंने कहा हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और मैंने कोशिश करके जितनी जोर से बंदूक का घोड़ा दबा सकता था दबा दिया और बोला तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी आज की रोटी हमें दे। बंदूक नहीं चली और मैंने सोचा हे परमेश्वर क्या तू मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, मैंने ऐसा क्या किया है कि तू मुझे मरने भी नहीं देता। और मैंने बंदूक नीचे फर्श पर फेंक दी। फेंकते ही बंदूक चल गई और गोली कमरे से बाहर निकल गई। और मैंने कहा परमेश्वर मैं मरकर क्यों नहीं इस हालत से छुटकारा पा सकता, इस तरह मैं और नहीं चल पाऊंगा, आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और मैं अपनी पुरानी गंदी शैया पर गिर पड़ा और रोता रहा और शायद तब मुझे नींद आ गई होगी। मुझे नहीं पता कि उस समय मैं सोया हुआ था या कुछ और घटित हुआ था। मैंने हमेशा से पश्चिम प्रांत में रहना चाहा है और मेरी यही इच्छा रही है कि पश्चिम में जैसे लोग पहनते हैं वैसा हैट मेरे पास हो। मेरे पिता अपनी जवानी के दिनों में घोड़ों के दलाल रहे थे और मैंने हमेशा चाहा है कि वैसा ही हैट मुझे मिले। और उस तरह का पश्चिमी हैट पहली बार मुझे कल ही भाई देमास शेकरियन ने भेंट किया है। तब मुझे लगा कि मैं किन्हीं वृक्षहीन घास के लंबे चौड़े मैदान में गीत गाता जा रहा हूँ। गाड़ी का एक पहिया टूटा है जो कि गाड़ी के बिकाऊ होने का चिन्ह है। और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक पुरानी बंद गाड़ी आती दिखाई दी जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। कोई संदेह नहीं कि ये मेरे टूटे परिवार का प्रतीक था। क्यों ही मैं उसके निकट पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ एक अत्यंत सुंदर जवान लगभग 20 वर्ष की लड़की खड़ी थी जिसका रंग सफेद, नीली आंखें और बाल लहरा रहे थे। वो सफेद वस्त्र पहने थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा आप कैसी हैं और आगे बढ़ गया। उसने कहा हेलो डैडी। मैं पीछे घूमा और कहा डैडी क्यों युवती, क्या मैं तुम्हारा पिता हो सकता हूँ जबकि तुम मेरी उम्र की सी हो। उसने कहा डैडी बस आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। मैंने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है। उसने कहा ये स्वर्ग है, धरती पर मैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची शारोन थी। मैंने कहा ऐसा कैसा है, तुम तो बहुत छोटी सी बच्ची थी। यहाँ पर छोटे बच्चे नहीं रहते, वे अविनाशी दशा में आ जाते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, नहीं बढ़ते हैं। और मैंने कहा अरे शारोन बेटी तुम तो बड़ी प्यारी नवयुवती बन गई हो। उसने कहा माँ आपका इंतजार कर रही है। और मैंने पूछा किधर? उसने कहा ऊपर तुम्हारे नए मकान में। मैंने पूछा नया घर? ब्रैनहम लोगों का घर नहीं होता, वे तो खाना बदोश होते हैं। बेटी मेरे पास तो कोई घर कभी नहीं रहा। उसने कहा मगर डैडी यहाँ आपके लिए घर है। मैं बच्चों की तरह से रोना नहीं चाहता, मगर ये सब मेरे लिए कितना सच्चा है, वास्तविक है। जब मैं वो सब सोचता हूँ तो सब कुछ फिर से हरा उठता है। उसने कहा तुम्हारे लिए एक मकान यहाँ है डैडी? मुझे पता है मेरे पास एक घर वहाँ है, एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा। उसने पूछा मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? मैंने कहा उसे कुछ क्षण पहले ही श्रीमती ब्रॉयस के यहाँ मैंने छोड़ा है। वो बोली माँ तुमसे मिलना चाहती है। और मैंने घूम कर देखा तो वहाँ बड़े बड़े महल थे और परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर भरी थी। और मैंने स्वर्गदूतों की मंडली को गीत गाते सुना जो गा रहे थे माई होम स्वीट होम, मेरा घर प्यारा घर। मैं तेजी से दौड़ता सा उधर चला और जब मैं द्वार पर पहुंचा तो होप वहां खड़ी थी। वो सफेद वस्त्र पहने थी और उसके काले लंबे बाल पीठ पर झूल रहे थे। उसने उसी प्रकार अपनी बाहें फैला दी जैसे वो मेरे काम से थककर घर वापस आने पर किया करती थी। मैंने उसके हाथ पकड़कर कहा प्रिय मैंने शारोन को वहां नीचे देखा है। मैंने कहा वो बहुत प्यारी लड़की बन गई है। उसने कहा हाँ बिल। उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर कसते हुए कंधों को थपथपाते हुए कहा मेरी और शिरोन की चिंता करना छोड़ दो। मैंने कहा प्रिय ऐसा करना मेरे वश में नहीं है। उसने कहा देखो मैं और शिरोन यहाँ तुमसे बहुत अच्छी हालत में है, हमारे लिए अब और चिंता मत करना, क्या तुम वादा करोगे? और मैंने कहा हो तुम्हारे और शिरोन के बिना मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सूना महसूस करता हूँ और बिली सारे समय तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या करूं। और उसने कहा सब ठीक हो जाएगा बिल। उसने कहा तुम बस वादा करो कि अब आगे से चिंता नहीं करोगे। और उसने कहा क्या तुम बैठोगे नहीं? और मैंने चारों तरफ देखा तो पाया वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी रखी थी। मुझे याद आया कि मैंने एक कुर्सी खरीदनी चाहिए थी। अब मैं बात समाप्त करना चाहूंगा। हाँ तो एक बार मैंने एक कुर्सी खरीदने की कोशिश करी थी। हमारे पास नाश्ते की मेज के साथ वही पुरानी लकड़ी के फट्टे वाली कुर्सियाँ थीं और हम चाहते थे कि एक वैसी ही कुर्सी खरीद सकें जैसी यहाँ उधर पीछे है। और मैं भूल गया इन आरामदेह कुर्सियों को क्या कहते हैं जैसी इधर पीछे है। और उसकी कीमत $17 थी और आप $3 नगद और $1 प्रति सप्ताह देकर कुर्सी खरीद सकते थे। हमने एक कुर्सी इसी तरह किश्तों पर ली। मैं सारे दिन काम करता, सड़कों पर आधी आधी रात तक वचन प्रचार करता और जहाँ कहीं भी जा सकता वचन सुनाता, फिर घर आकर इसी कुर्सी पर विश्राम करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं समय पर कुर्सी की किस्त नहीं दे पाया। हम भुगतान नहीं कर पाए थे और कई दिन बीत गए थे। और एक दिन कुर्सी वाले आए और मेरी कुर्सी उठाकर ले गए। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन उसने मेरे लिए रसबेरी पकाई थी। बेचारी को उस समय पता था कि कुर्सी न पाकर मैं निराश होऊंगा। और शाम के भोजन के बाद मैंने कहा प्रिय तुम आज रात इतनी अधिक अच्छी बातें क्यों कर रही हो? और उसने कहा मैंने पड़ोस के लड़कों से तुम्हारे लिए केंचुए खुदवाए हैं, क्या तुम चाहोगे कि आज रात हम नदी पर जाकर कुछ देर मछली का शिकार खेलें? और मैंने कहा हाँ मगर। तभी वो रोने लगी थी। मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे कुछ आभास हो गया था क्योंकि मुझे उन्होंने नोटिस भेज दिया था कि वो कुर्सी लेने आ रहे हैं। हम प्रति सप्ताह $1 का भुगतान नहीं कर पाए थे, हम कर ही नहीं सकते थे, हमारे लिए वो असंभव। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दी थी और मैंने द्वार में घुसते हुए देख लिया था कि मेरी कुर्सी जा चुकी थी। और वहाँ ऊपर स्वर्ग में होप ने मुझसे कहा बिल क्या तुम्हें वो कुर्सी याद है? मैंने कहा हाँ प्रिय मुझे याद है। उसने कहा यही वह कुर्सी है जिसके बारे में तुम सोचते थे, क्या वही नहीं है? उसने कहा वो इसे वापस नहीं ले सकते, इसका मूल्य चुका दिया गया है। उसने कहा एक मिनट बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा प्रिय मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसने कहा बिली मुझसे वादा करो बिली कि तुम आगे से कोई चिंता नहीं करोगे, तुम अब वापस जा रहे हो। और उसने फिर कहा वादा करो कि तुम फिक्र नहीं करोगे। और मैंने कहा हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी मैंने पाया कि मैं अपने कमरे में था, वहाँ अंधेरा था। मैंने चारों ओर देखा और उसकी बाहों को अपने चारों ओर अनुभव किया। मैंने पूछा हो क्या तुम यहाँ इस कमरे में हो? और उसने मुझे थपथपाया और कहा तुम्हें मुझसे एक वायदा करना है बिल। वादा करो कि तुम आगे से चिंता नहीं करोगी। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ। और उसके बाद उसने मुझे दो तीन बार थपथपाया और फिर वो चली गई। मैं उछल कर खड़ा हुआ, कमरे की बत्ती जला दी और चारों तरफ देखा, वो जा चुकी। किंतु वो केवल उस कमरे से ही गई थी। वो मरी नहीं, खत्म नहीं हुई, वो आज भी जीवित है, वो एक मसीही थी। एक दिन ईस्टर की प्रात मैं और बिली कुछ दिन पहले उनकी कबर पर गए। बिली अपनी माँ और बहन के लिए फूल लिए था। हम वहाँ पहुँच कर रुक गए। बच्चा रोने लगा और बोला, डैडी मेरी मम्मी क्या वहाँ नीचे बंद है? मैंने कहा, मेरे बच्चे वो यहाँ नीचे नहीं है, तुम्हारी बहन यहाँ नीचे नहीं है, हमारी कब्रें यहाँ ऊपर से बंद हैं, मगर दूर समुन्दर के उस पार एक कब्र है खुली पड़ी है, जो जिसमें से यीशु जीवित हुआ है, और एक दिन वो आएगा और तेरी माँ और बहन को साथ लेकर आएगा। दोस्तों, मैं आज अपने काम की युद्ध भूमि में हूँ। अब मैं और अधिक नहीं कह पाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हे प्रभु, बहुत बार हे प्रभु, मैं पक्की तरह जानता हूँ कि लोग समझते नहीं हैं और इन सब बातों को बहुत हल्के ढंग से सोचते हैं, मगर एक बड़ा महान दिन आने वाला है जब यीशु आएगा और ये सब दुख दर्द जाता रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस समय की तैयारी में हमारी मदद करें। मैंने उस सुबह उसके गालों को चूमकर उससे आखिरी वायदा किया है कि मैं उसे वहाँ मिलूंगा। मैं सोचता हूँ कि वो उधर खंबे के पास खड़ी मेरा नाम पुकारेगी। प्रभु, उस दिन से मैंने उस वायदे के अनुसार ही जीवन गुजारा है। सारी दुनिया में सभी तरह के स्थानों पर मैंने सुसमाचार सुनाने का प्रयत्न किया है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक गया हूँ, टूट चुका हूँ। आजकल मैं किसी दिन अपनी ये पवित्र शास्त्र की पुस्तक अंतिम बार बंद करूंगा और परमेश्वर मुझे किए गए वायदे के अनुसार वफादार बनाए रखना। मेरे चारों ओर प्रभु अपने अनुग्रह को बनाए रखिए। होने दे कि मैं अपने इस जीवन की चीजों को ना देखूं, वरन उस पार जो चीजें हैं उन पर ध्यान लगाए रहूं। ईमानदार बने रहने के लिए मेरी मदद करें। मैं आपसे फूलों वाले बिस्तर वाला सुख नहीं मांगता, नहीं प्रभु, क्योंकि मेरे मसीहा ने बड़े दुख उठाकर अपने प्राण दिए थे और बाकी सभी लोग भी उसी तरह से मरे हैं। मैं भी आरामदायक जीवन नहीं मांग रहा हूँ। प्रभु, बस मुझे अपने प्रति सच्चा और निष्ठावान बनाए रहिए। उन्हें दीजिए कि लोग मुझे प्रेम करें ताकि मैं उन्हें आप तक ला सकूं। और किसी दिन जब ये सब समाप्त हो जाए और हम उन सदाबहार वृक्षों के तले जमा हुए, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका हाथ थाम कर चलूं और सभी लोगों को दिखाऊं, यहाँ के सभी लोग, एंजेलिस टेम्पल के सभी लोग और दूसरे लोग उस दृश्य को देख सकें। तब वो दिन मेरे लिए कितना शानदार होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी करुणा यहाँ हम सभी पर बनी रहे और उन पर भी हो प्रभु, जो तुझे अभी जानते तक नहीं है, और उनके अगर कोई छोटे छोटे अजीज प्रिय उस पार पहुँच चुके हों, और अगर लोगों ने उनसे किए वायदे अभी तक पूरे न किए हों, तो प्रभु होने दे अब वे उन्हें पूरा कर सकें। अब जबकि हमारे सिर प्रार्थना में झुके हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आज दोपहर इस बड़े सभागार में कितने लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ब्रणम, हम भी अपने उन प्रियजनों से मिलना चाहते हैं। मेरे भी कुछ प्रिय अजीज उस पार मौजूद हैं। हो सकता है आपने उनसे मिलने का वादा किया हो। हो सकता है उस दिन माँ को उसकी कब्र पर अलविदा कहते समय आपने उससे मिलने का वादा किया हो। हो सकता है आप में से कुछ ने अपने पापा, छोटी बहन या कुछ और प्रिय जनों को उनकी कब्र पर खड़े होकर अलविदाई दी हो, कहा हो, वादा किया हो कि आप उनसे उस पार मिलेंगे, मगर अभी तक उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं करी हो। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि तैयारी करने के लिए अभी उत्तम समय है? मेरे इस तरह रोने के लिए मुझे माफ करें, लेकिन ओह हे प्रभु, मित्रों, आप इस बात को महसूस नहीं करते। आप नहीं जानते कि कैसी कुर्बानी दी गई है, लेकिन मेरी जीवन कथा का यह अंश कदाचित महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप में से कितने लोग चाहेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए, वे उठें और चलकर यहाँ आएं। कहिए मैं अपने प्रियजनों से मिलना चाहता हूँ। सभा में से आप लोग उठें और यहाँ आएं। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या वे सभी लोग आएंगे जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है? परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रीमान, मैं देख रहा हूँ कि एक वृद्ध अश्वेत सज्जन और दूसरे लोग आ रहे हैं। आप जो ऊपर बालकनी में बैठे हैं, उठकर सीधे गलियारे में आते जाएं, या केवल वहीं खड़े होते जाएं, जो ये चाहते हैं कि प्रार्थना में उन्हें अभी याद किया जाए। खड़े होते जाइए, ये अच्छी बात है। आप में से जो कोई भी ये कहता है कि मेरी माँ या पिता या कोई और आत्मजन ऊपर मेरी प्रतीक्षा में है, वो यहाँ जहाँ भी बैठा है कृपया खड़ा हो जाए। जो भी चाहता है कि उनसे मिले, उन्हें देखे, जो कहता है कि मैं उन्हें शांति में देखना चाहता हूँ, वे सभी लोग चाहे इस सभा में कहीं भी बैठे हैं कृपया खड़े हो जाएं। अपने पांव पर खड़े होकर कहें, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूं। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। उधर पीछे आपको भी आशीष दे। इधर ऊपर आपको भी आशीष मिले। प्रभु इधर इधर यहां आपको भी आशीष दे। ऊपर बालकनी में प्रभु आपको आशीष दे। अब सभी ओर आप सब खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जबकि इस समय पवित्र आत्मा यहाँ हमारे हृदयों में जुम्बिश कर रहा है और सख्त हृदयों को तोड़ रहा है। आप जानते हैं कि गिरजों को आज जिस बात की जरूरत है वो है स्वयं को नम्र करना, तोड़ना। हमें आज जरूरत है कि हम फिर से कुम्हार के पास जाएं। हमारी अपनी बनाई सख्त धार्मिक बातें कभी कभी कुछ काम नहीं आती। हमें जिस बात की जरूरत है वो ये है कि हम पुराने समय की पुरानी टूटन हृदयों में भरें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ संबंधों को अधिक मधुर बनाएं। क्या प्रार्थना करने के लिए इच्छुक सभी लोग अब यहाँ खड़े हैं? तब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं।
ओ लॉर्ड, हु ब्रॉट अगेन जीसस फ्रॉम द डेड टू जस्टिफाई,
जो यीशु को मुर्दों में से जिला लाया ताकि उस पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकें।
I pray, Lord, that these who are standing now to their feet to
ये सब लोग जो तुझे ग्रहण करने के लिए यहाँ खड़े हैं, मैं प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके पापों को क्षमा किया जाए। और हे प्रभु, होने दे ये तुझे अपना प्रिय राजा मुक्तिदाता जानकर ग्रहण कर सकें, ये मेरी प्रार्थना है। और हो सकता है कि उस पार इनमें से किसी के पापा, मामा या कोई और प्रियजन चले गए हों। एक बात तो सुनिश्चित है कि इन लोगों को अब एक उद्धार करने वाला मिल गया है। होने दे कि इनके पाप क्षमा किए जाएं और इनकी सभी अधार्मिकताएं धो दी जाएं। इनकी रूहों को मेमने के लहू से धोकर साफ किया जाए और आज से ये लोग तेरी शांति में बने रह सकें। और किसी महान शानदार दिन जबकि ये सब समाप्त हो जाए तो हम सभी तेरे भवन में एकत्रित होने पाएं और वहाँ एक बड़े परिवार के रूप में जो कभी टूटेगा नहीं फिर से अपने उन प्रिय जनों से मिल सकें जो उस पार हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि तू उन लोगों को अपनी सिद्ध शांति में बनाए रखे जिनके हृदय तेरी ओर लगे रहते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे भरोसा है कि सेवक गण आप सबको जो खड़े हैं और अब उनसे जो प्रार्थना कार्ड लेने वाले हैं, बिली, जीन और लियो कहाँ हैं? उधर पीछे हैं। कुछ ही मिनटों में वो लोग आपको प्रार्थना कार्ड जारी करेंगे। भाई अभी प्रार्थना करके सभा को विसर्जित करेंगे और फिर प्रार्थना कार्ड जारी किए जाएंगे। हम थोड़ी ही देर के बाद यहाँ फिर से उपस्थित होंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है भाई।